Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek diye. Hatırlayanlar ne? Seyyid-ül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti बनाया. तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा एक काम दिया गया है, एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली जा रही है. तो पैदा होते ही ये कहा जा रहा है कि बेटा तुमने दुनिया में सवाब को बुलंद करना है. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह का तारुफ कराना है सारी दुनिया को. अल्लाह अकबर कि बेटा अल्लाह बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, सब छोटे हैं, अल्लाह बड़े हैं. आसमान जमीन सारे के पैदा करने वाले अल्लाह हैं, हवाओं का निजाम चलाने वाले अल्लाह हैं, और कायनात का एक एक जर्रा उसके ऊपर अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह का हुक्म चलता है. समंदरों को अल्लाह ने बिछाया है, हवाओं को अल्लाह पाक चलाते हैं, सर्दी में से गर्मी अल्लाह पाक लेके आते हैं, गर्मी में से सर्दी अल्लाह पाक लेके आते हैं. एक छोटा सा बीज जमीन में जाता है, उसमें से इतना बड़ा दरख्त अल्लाह की कुदरत से निकलता है. जब हम बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह पाक से अता फरमाते हैं, तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं. और मेरे बदन के अंदर बेशुमार निशानियां हैं जो अल्लाह की निशानियां हैं. पहला काम क्या है? अजान की जाती है. अजान क्या है? अजान के बाद की दुआ क्या है? अल्लाह रब्ब हाज़ा इस्तावत इस्तामा, मुकम्मल दावत, मुकम्मल दावत. इस बच्चे को पैदा होते ही पहला सबक ये दिया जा रहा है कि देखो इस दावत के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा किया गया है, तुम्हें इस दावत के काम के लिए दुनिया में भेजा जा रहा है. तुम्हारे जिम्मे है इस अजान को पूरी दुनिया में बुलंद करना. तुम आम बच्चे नहीं हो, तुम आम बच्चे नहीं. अगर तुम एक आम बच्चे होते तो तुम्हें अल्लाह पहले किसी नबी की उम्मत में पैदा करता. तुझे अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और तुम्हें अल्लाह ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया. तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा एक काम दिया गया है, एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली जा रही है. तो पैदा होते ही ये कहा जा रहा है कि बेटा तुमने दुनिया में सवाब को बुलंद करना है. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह का तारुफ कराना है सारी दुनिया को. अल्लाह अकबर कि बेटा अल्लाह बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, सब छोटे हैं, अल्लाह बड़े हैं. आसमान जमीन सारे के पैदा करने वाले अल्लाह हैं, हवाओं का निजाम चलाने वाले अल्लाह हैं, और कायनात का एक एक जर्रा उसके ऊपर अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह का हुक्म चलता है. समंदरों को अल्लाह ने बिछाया है, हवाओं को अल्लाह पाक चलाते हैं, सर्दी में से गर्मी अल्लाह पाक लेके आते हैं, गर्मी में से सर्दी अल्लाह पाक लेके आते हैं. एक छोटा सा बीज जमीन में जाता है, उसमें से इतना बड़ा दरख्त अल्लाह की कुदरत से निकलता है. जब हम बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह पाक से अता फरमाते हैं, तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं. और मेरे बदन के अंदर बेशुमार निशानियां हैं जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं. आंखें तुझे अल्लाह ने दी है, कान तुझे अल्लाह ने दिए हैं, कानों में सुनने की ताकत अल्लाह ने रखी है, आंखों में देखने की कुव्वत अल्लाह ने रखी है. सारी कायनात के ऊपर अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह का हुक्म चलता है. तो ऐ बेटे, जो तू दुनिया में आया है, तेरे जिम्मे सारी इंसानियत को अल्लाह का तारुफ बनाना है तेरी जिम्मेदारी. पहला काम क्या है कि अल्लाह को दुनिया के सामने अल्लाह का तारुफ करो. तुझे अल्लाह ने दुनिया में चीज भेजा और वो अल्लाह जो सारी कायनात के पैदा करने वाले हैं, वही सारे हालात के खालिक हैं. देखो अमन अल्लाह के इरादे से मिलेगा, राहत अल्लाह के इरादे से मिलेगी, इज्जत अल्लाह की चाहने से मिलेगी, हिफाजत अल्लाह पाक के इरादे से होगी. जब अल्लाह पाक हिफाजत करने का इरादा करते हैं तो हलाकत के सारे असबाब जमा हो जाए, उस बच्चे हिफाजत करके दिखा देते हैं. तो तलवारों के बीच में से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के मौके पर मक्का मौजमा से निकाल के मदीना मुनव्वरा ले गए. गार के मुंह तक दुश्मन पहुंच गया, वहां भी अल्लाह ने हिफाजत करके दिखा दी. और हिफाजत के लिए कबूतरी का अंडा, बकरी का जाला. किसी की समझ में नहीं आ सकता कि बकरी के जाले के जरिए कैसे किसी की हिफाजत हो सकती. आग के अंदर ले जाके سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے. چھوڑی کے نیچے لے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے دکھایا اور سمندر میں لے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کر کے دکھائی کہ دیکھو ہم حفیظ ہیں، اپنی ذات سے حفیظ ہیں اور حفاظت کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں، چاہے حفاظت کے اسباب کے ذریعے حفاظت کریں، چاہے حفاظت کے اسباب کے بغیر حفاظت کریں، اور چاہے ہلاکت کے سارے نقشے جمع ہو جائے اس میں سے بچا کے دکھا. امن دینے والے اللہ ہیں، امن لانے والے اللہ ہیں، حکومتوں کے ہاتھ میں امن کا نظام نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی مکہ معظمہ کی، جب وہ بیت اللہ تعمیر کیا اس وقت جو دعا مانگی اس میں سب سے پہلی بھی چیز مانگی اللہ سے امن مانگا کہ اللہ اس شہر والوں کو امن عطا فرمائے. تو امن مومن، مومن اللہ ہے، امن دینے والے اللہ ہے، چاہے امن کے اسباب کے ذریعے سے امن دے دے، چاہے امن کے ظاہری نقشوں کے بغیر امن دے دے، امن دینے والے اللہ ہے. پرورش کرنے والا رب اللہ کی ذات ہے، پالنے والے اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، نفع اور نقصان دینے والا کوئی نہیں، ایک اللہ ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. تو یہ آواز لگانا ہر مسلمان کی ذمہ داری، پیدا ہوتے اس کے ذمہ یہ کام کیا گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز لگاؤ کہ دیکھو اس اکیلے اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے عباس رضی اللہ عنہ 10-12 سال ان کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے بچوں کو ایمان سکھانا، بچوں کا ایمان سیکھنا. یہ سیکھنے کی چیز، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، تقویٰ سیکھنے کی چیز، نماز سیکھنے کی چیز، اللہ کا دھیان پیدا ہو یہ سیکھنے کی چیز، سیکھنے کی سیکھنے کی چیز. تو کہاں کیا لڑکے، اے بیٹے تجھے کچھ باتیں کہتا ہوں توجہ سے سننا. تو اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا. آدمی کے بس میں توجہ اور دھیان سے سننا ہے، ادب کے ساتھ سننا ہے، باقی عمل کرنے کی توفیق دینا اور اس کو اس کے ذریعے سے اور تک پہنچانا اللہ پاک اس کا راستہ بنا دیتے. میں کیا لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اے لڑکے، اے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور اے لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اچھا یہاں اللہ تو خود حفیظ ہے، اللہ تو حفاظت کی محتاج نہیں، کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہاں حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اللہ کے عوامل، اللہ کے احکامات کی حفاظت ہے. کیا بیٹے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور تو اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کم قسمتی سے مسلمان نے اللہ کے دین کی حفاظت چھوڑ دی، جگہ 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 مصیبتوں کا شکار ہو گیا. جگہ جگہ رحم، جگہ جگہ پنڈت رہا ہے. کیا کہا کہ تن ہوا داغ داغی بمبا بھی پجا پجا تھا، ہمارا تو پورا جسم ہی جگہ جگہ رحم بنے ہوئے پنڈت رہا ہے. تو پٹیاں کہاں کہاں لگاؤ گے، پٹی کہاں کہاں لگاؤ گے؟ امت نے بڑے بزرگوں بھائیوں، یہ کچھ درد کی باتیں ہیں، کچھ غم کی باتیں، کسی کو بیان ہو رہا ہے، کوئی تقریر ہو رہی ہے. ایک راستہ تھا جس سے ہم چل رہے تھے، ہم اس سے دور چلے، اس کی طرف توجہ دلانی، اس کی طرف یاد دلانی کرا رہے تھے، بھول گئے نا، بھولا ہوا سبق. تو اے لڑکے یا بیٹے تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اے بیٹے جو بات تجھے پہنچی ہے ہر حال میں تجھے پہنچی، خوشی غم پریشانی راحت، جو بات تجھے پہنچنی تھی ہر حال میں تجھے پہنچنی تھی، اور جو نہیں پہنچتی وہ کبھی بھی تجھ تک نہیں پہنچتی. ایوری ڈے اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، میں اگر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، مگر وہ جو اللہ نے تیرے رکھا ہے نہیں دے سکتے. فلاں ملک کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں ملک والے یوں کر دیں گے، فلاں ملک والے ایسا کر دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کو حکم چلتا ہے، اللہ کا عمل چلتا ہے. مل جائے مل کر تجھے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے ٹھیک رکھا ہے اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے ٹھیک رکھا ہے نہ بیٹے یا لڑکے تقدیر کا قلم ہر چیز کو لکھ چکا ہے تحریر خشک ہو چکی ہے اور قلم کو اٹھا لیا گیا ہے ساری کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں کچھ نہیں تھا اللہ نے ساری کائنات کو بنایا پہلے اللہ نے پانیوں کو بنایا پھر اللہ نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا اس سے پہلے لوح اور قلم کو بنایا پھر اللہ پاک نے زمین کو اس کے اوپر بچھایا جہاں اس وقت بیت اللہ ہے بیت اللہ ہے جہاں وہاں سے زمین بننی شروع ہوئی زمین کا نقشہ اگر غور سے دیکھیں نا کہ آپ بدلا کوئی جغرافیہ پڑھنے والے جیولوجی پڑھنے والے موجود ہوں گے نہیں ہوئے ایسے ماشاء اللہ تو زمین کا نقشہ اگر دیکھے اس کو سارے کو ملا دیں تو صاف نظر آتا ہے بالکل وہ حرم حجاز کا جو علاقہ بالکل بیچ میں آتا ہے تو اللہ نے وہاں سے زمین کو بچھانا شروع کیا خشکی کو پھیلانا شروع کیا پانی کے اوپر اب زمین پانی کے اوپر ہلتی پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کیلوں کی طرح اس کے اندر گاڑ دیا زمین کا ہلنا بس ہو گیا تو زمین کو بنایا اللہ نے پہاڑوں کو بنایا پھر اس پانی سے اللہ نے اس کے اوپر تجلی فرمائی اس سے پھر آسمان بنے اور سارے کا سارا کائنات کا نظام اللہ نے بنایا یہ بگ بینگ کا مسئلہ نہیں ہے جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا خود بہت سب کچھ وجود میں آ گیا یہ اتنی ناسمجھی کی بات ہے اتنی بے وقوفی کی بات ہے ایک دن کا یہاں سے ہلتا ہے تو اس کا سبب تلاش کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور اتنی بڑی حقیقت اتنی بڑی کائنات کا نظام یہ خود بہت وجود میں آ گیا ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے دیکھ اللہ والے ہر دور میں رہا ہے یہ مسئلہ ہر دور میں ایسی ہم کسی کو نہیں مانتے کسی کو نہیں مانتے وہ ایک اللہ والے ان کے پاس ایک شہری آ گیا کہنے لگا میں تو خدا کو نہیں مانتا ہے تو آپ ثابت کریں جو اللہ کا میں کہا کہ بھائی اکیلے تیرے ساتھ بات کرنے کا تو فائدہ جو اور لوگ بھی جمع ہوں تو آپس میں بات کر لیں گے سب کے سامنے بات آ جائے گی اگر تم حق میں ہوئے تو ہم مان لیں گے اگر تم حق میں ہوئے تو تم مان لینا ٹھیک ہے کیا فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں گے وقت طے ہو گیا تو مقررہ دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ایک میدان تھا اس میں اور یہ بزرگ ہیں یہ وقت پہ پہنچے نہیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گھنٹہ گزر گیا پہنچے نہیں اب وہ سب کیونکہ یہ تو ایمان والے دیندار لوگ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس کا وعدہ کرے اس میں پہنچے نا وقت پہ نہ پہنچے یہ نہیں ہوتا تو وقت کی پابندی کرنا 8 بجے کلاس لگ رہی ہے تو 8 بجے سے پہلے وہ آپ پہنچے کیا کیونکہ عمل میں اللہ نے تربیت فرمائی ہے کہ اللہ نے نماز کو کیا مقررہ وقت پہ فرض کیا مقررہ وقت پہ فرض کیا کیا ان نے صلاح کارن قدموں کے لیے کتابوں موجود ہے مقررہ وقت پہ اللہ نے فرض کیا ہے اچھا 5 منٹ بعد میں پڑھو زہر کا وقت گزر جانے کے اثر کا وقت داخل ہو گیا 5 منٹ بعد پڑھو تو نماز ہو جائے گی کیا کہیں گے سزا ہو گئی اچھا 5 منٹ پہلے پڑھ لو ابھی زبان چل رہا ہے تو نماز پہلے پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی تو مسلمان کی ہر چیز مسلمان کی زندگی کی ہر چیز میں پابندی اس کے اندر اور یہ وقت دو دھاری تلوار ہے جو اس پر لحاظ رکھتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو یہ وقت جو ہے نا یہ اس کا خیال کرتا ہے وقت اس کا خیال کرتا ہے اور جو اس کو ضائع کرتا ہے یہ وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے یہ زندگی ضائع کر دیتا ہے بس سب بڑا دکھ ہوتا ہے نوجوان جو ہے پڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جی کیا کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں وقت پاس کرنے کی چیز نہیں ہے وقت تو گزر رہا ہے یہ بہتا جا رہا ہے بہتا ہوا سمندر ہے بہتا ہوا دریا ہے جو ایک منٹ میں اپنے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور کرتے کرتے یہ سمندر میں پہنچ جائے گا آدمی کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا موت کا وقت آ جائے گا پھر کچھ آئے گا حالانکہ یہ زمانہ یہ زندگی یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کے ایک منٹ میں یہ بہت بڑے پیمانے پہ کمائی کر سکتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ کمائی کر سکتا ہے جنت میں जन्नति जो है वो अपनी जन्नत में बैठा होगा, तो एक जाना उस पर खुशबू आएगी जन्नत में, हैरान हो जाएगा कि खुशबू कहाँ से आई है, खुशबू कहाँ से आई है। तो फरिश्तों से पूछने लगा कि अजीब खुशबू है, ये कहाँ से, क्या तेरे से ऊपर वाला जो जन्नति है उसने अपनी जन्नत में करवट बदली है, उससे खुशबू पैदा हुई। तो बड़ा हैरान, क्योंकि उसके कौन से खास अमल थे जिसकी वजह से इसको इतना ऊंचा दर्जा मिला। तो जब पता करेगा तो मालूम ये होगा कि इसने ऊपर वाले जन्नती ने इससे एक दफा सुभान अल्लाह ज्यादा कहा। अब बताओ मेरे दोस्तों, जो मुसलमान इतनी कमाई कर सकता हो एक सुभान अल्लाह कहने पे, एक सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत में दरख्त लग जाता है। और ये आम दुनिया के दरख्तों की तरह नहीं है, जन्नत के दरख्त, अल्लाह अकबर, जन्नत के वादे दरख्त इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि 100 साल तक नीचे चलते रोग का साया खत्म नहीं होता। और बाहर तरफ जन्नत के ऐसे हैं कि ऊपर वाले हिस्से में से कपड़े बन बन के निकलते रहेंगे और नीचे वाले हिस्से से सवारियां बन बन के निकलेंगी। अच्छा, मैं सोचता रहा कि ये जो कहा गया कि ऊपर वाले हिस्से से कपड़े बन के निकलेंगे, तो दुनिया में भी तो यही हो रहा है कि जो कपास का जो पौधा है, रुई जो है वो उसी तक निकल दिया ना, ऊपर वाले हिस्से से रुई, फिर धागा, फिर उसके बाद मिशी का लंबा जोड़ा निजाम बनता है, ये सारे फैसलाबाद वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसी पे निकलाते हैं सारे। तो ऊपर वाले हिस्से से कपड़े बन बन के निकलेंगे और सवारियां जितनी है, गधा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, बसों में भी लकड़ी, हर जगह वो नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ इंसान को बीच में मेहनत करनी पड़ती है, वहां बगैर मेहनत के सीधा सीधा ही अल्लाह पाक उसमें से बना बनाया कपड़ा उसमें से दरख्तों में से दे देंगे, बनी बनाई सवारियां दे देंगे वहां पर। अब एक दरख्त में दो फैक्ट्रियां लगी हुई है, ऐसे बड़े बड़े दरख्त। अच्छा, बाजे दरख्त ऐसे हैं कि उनका पत्ते सोने के और चांदी के पत्ते उनके अंदर, उसमें से हवा गुजरती है तो मौसीकी पैदा होती है। लेकिन जो दुनिया में मौसीकी सुनने का आदि होगा वह जन्नत की मौसीकी को नहीं सुन सकेगा। तो ऐसे बड़े बड़े दरख्त अल्लाह ने बना रखे। अच्छा, वाले दरख्त ऐसे हैं कि उसके ऊपर कलियां लगी हों, बहुत खूबसूरत कलियां लगी हों। अब दरख्त के करीब जब जाएगा तो वो कलियां नहीं होंगी बल्कि छोटी छोटी सी फूलें लगी होंगी। अच्छा, जिसको हाथ लगाएगा वो पूरी नौजवान लड़की खड़ी होकर सामने आ जाएगी। ये जन्नत के दरख्त है। और उसकी इन सारे दरख्तों की कीमत क्या है? एक सुभान अल्लाह। आदमी दुनिया में सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाह अकबर कहता है जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो वक्त बहुत कीमती सरमाया है, एक मिनट भी हमारे पास जाया करने का नहीं, एक मिनट भी जाया करने का नहीं हमारे पास। मुसलमान और वक्त जाया करते, वो मुसलमान और ये कहे कि जी टाइम पास कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं। तो अब वो अल्लाह वाले दरवाजे पे पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो अब वो सारे लोग जमा और आते हैं, दान देखने शुरू कर दिया। अजीब अल्लाह वाले हैं, अजीब नेक लोग हैं, सफेद कपड़े के ऊपर, सफेद कपड़े से जरा निशान जल्दी नजर आ जाए, साफ जल्दी नजर, जरा से भी कमी हो जाए ना, नहीं बाकी जो चाहे करते रहते हैं। लेकिन देखो मुसलमान जो है ना, कि मुसलमान उसके जरा से कोई चीज होगी ना कि कमी, तो सारी दुनिया के मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसा होता है नहीं, नहीं हम मुसलमान हैं और इस्लाम की तरफ मंसूब है, हम इस्लाम की तरफ लाज रखनी पड़ती। कहते ना, क्या कहते हैं कि भाई तुम इस्लाम कॉलेज में पढ़ते हो, पर अपने कॉलेज का, हम वहाँ एसटी कॉलेज में लाहौर में पढ़ते थे, तो हमारे जब वो फाइनल ईयर हमारा हुआ एमएससी का आखिरी साल था, तो हमारे वहाँ एक साहब ने क्या वो संदेह तक नहीं करते हैं कि जो होता है क्या वो, तो क्या कहते हैं, आज भूल ही गया, फिर जलसा होता है क्या, तीन इतनाथ का जो जलसा होता है उसमें साथ में एक दफा होता है, तो उसमें उन्होंने तकरीर की। हमारे फिर एक आदमी थे, अच्छा रजीदार थे, उन्होंने जो तकरीर की उसमें एक बात कही, चले देखो मैं और तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे कॉलेज के पूरे मुल्क में नाम है, तो इस नाम की लाज रख, नाम की लाज रखना। तो हर तालीमी इदारे वाले उनकी कोशिश होती है कि उनके नाम की लाज रखें। अल्लाह अकबर, इनके नाम क्या है, मिटने वाले, सब खत्म हो जाने वाले। कितने पहले से आज से 100 साल पहले कितने नाम से आज को वो जानता है। तो ये सब मिटने वाले नाम है, लेकिन वो दीन, वो इस्लाम जो कयाम तक रहने के लिए आया है, हम उसकी लाज न रखें। हम जो भी हरकत करेंगे ये इस्लाम के साथ मंसूब होती है। अजी मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वक्त की पाबंदी नहीं करता, मुसलमान वादे को पूरा नहीं करता, मुसलमान जो है झूठ बोल रहा है, मुसलमान जो है, हम मुसलमान हैं और हमारी हर चीज इस्लाम के साथ मंसूब है, इस्लाम के साथ मंसूब है। नहीं नहीं, हम इसमें नहीं लगेंगे, इस्लाम की लाज रखें और कुछ नहीं। इंशाल्लाह इस लाज रखने पर अल्लाह कयामत के दिन हमारी लाज रखेगा, वरना अल्लाह अकबर क्या होगा। ये नहीं कि 20-25 हजार का मजमा ये नहीं होगा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का आने वाला आखिरी इंसान सब कयामत के दिन वहां जमा होंगे और उन सब के बीच में ऐलान किया जाएगा कि फलां इब्ने फलां उसने इस्लाम की लाज नहीं रखी, उसने अल्लाह के अहकाम की कदर नहीं की, उसने अल्लाह के रसूल के तरीकों की कदर नहीं की। आज सुन लो, वो जलील हो गया, रुस्वा हो गया, नाकाम हो गया। और जिसने दुनिया में झूठी मोटी भी इस्लाम की लाज रख ली, अल्लाह के अहकाम को जैसा तैसा भी पूरा करने की कोशिश करता रहा, गलतियां होंगी, कमी पेशी होगी, ऊंच-नीच होगी, लेकिन इसके अंदर का जज्बा ये था, मुझे अल्लाह की माननी है, अल्लाह के रसूल के तरीकों पे चलना है, मुझे और किसी चीज को नहीं देखना, अल्लाह इसकी लाज रखेगा, कयामत के दिन इसको बुलाएगा और इसके ऊपर हाँ एक पर्दा डाल देगा और फिर उसको गिनवाएगा कि मेरे बंदे तूने ये गुनाह किए हैं, ये गुनाह किए हैं, बता तो नहीं है कि नहीं, हाँ ये अल्लाह ये हो गए, लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपकी मान के चलूँ अल्लाह के रसूल के तरीके, लेकिन फिर भी मुझसे गलतियाँ होगी, मुझसे गलतियाँ होगी। अल्लाह क्या कहेंगे कि मेरे बंदे, हमने तेरी दुनिया में भी सरदारी फरमाई, आज भी हम सारी दुनिया के इंसानों के सामने तेरी सरदारी फरमाते हैं, किसी को उसके किसी गुनाह की खबर नहीं होगी और अल्लाह उसको सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो जो अल्लाह के अहकाम की, अल्लाह के दीन की लाज रखेगा, अल्लाह पाक उसकी लाज रखेगा कयामत के दिन। तो वो अल्लाह वाले जो है, उन्होंने पहुंचे जब तो खैर बात शुरू हो गई, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें देखो पहले मेरी बात सुन लो, मुझे दाखिल क्यों हुई, मैं देर से क्यों पहुंचा। मैं जब वहां पहुंचा तो दरिया की पल्ली के किनारे में मेरी रिहाइश है, मैं आया तो वहां एक जो पुल था वो टूटा हुआ था दरिया में, तो यानी कि पुल टूटा हुआ था, अब कोई नजर नहीं आ रहा था क्या करूं, तो कश्ती वगैरह कोई नहीं थी वहां पर, खाली दरिया के किनारे में परेशान, कैसे करूं, कैसे पल्ली तक जाऊं। तो आप लोग जमा हो रहे बस्ती मुकर्रर को, मैं इसी परेशानी में खड़ा था कि मैंने देखा, अचानक देखा कि वो जो दरख्त थे ना जी, उसके तने कटना शुरू हो गए और वो तख्तों में बदलना शुरू हो गए। फिर मैंने देखा कि वो तख्ते खुद बखुद एक दूसरे के साथ आगे जुड़ना शुरू हो गए और वो कश्ती बनना शुरू होगी। फिर वो कश्ती जो है खुद बहुत चली और दरिया के किनारे पे पहुंच गई। फिर मैं उसमें बैठा और वो कश्ती खुद बहुत चल के दूसरे किनारे पे आ गई। मैं यहाँ पहुंचा, कश्ती से उतरा, तुम्हारे पास आ गया। क्या सब वो बात नहीं है, कभी ऐसे हो सकता है कि दर खुद बहुत कटना शुरू हो जाए, उसके खुद बहुत तख्ते बन जाए और खुद भी चले और खुद जो है यहाँ पर पहुंचा दे, ये इसका दिमाग तो नहीं चल गया, पागल तो नहीं हो गया। जब उसने ये कहा कि भाई मुझे यही कह रहे हैं, जब एक छोटी सी कश्ती खुद बखुद नहीं बन सकती, इतना बड़ा कायनात का निजाम खुद बखुद कैसे वजूद में आ सकता है, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, सूरज और चांद सितारे का निजाम, हवाओं का निजाम, ये सारे का सारा खुद बखुद कैसे वजूद में आ गया। एक लाज है, उसने इसको बनाया, उसने इसको बनाया, अल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन पूछा कि जी ठीक है, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, मानते हैं, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। तो देखो अगर ये बता देंगे अल्लाह को किसने बनाया, तो तुम अगला सवाल करोगे कि उसको किसने बनाया। अगर ये बता दें कि उसको किसने, फिर अगला सवाल करोगे तो उसको किसने बनाया, उसको किसने पैदा किया। क्यों जी, ये सवाल पैदा होगा ना जी। अच्छा कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा, किसी जगह जाके रुकेंगे ना, जहां जाके रुकेंगे वो अल्लाह, जहां जाके रुकोगे चलते 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 वो अल्लाह है। उस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, उस अल्लाह का इसके ऊपर कब्जा है, अल्लाह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नफे और नुकसान के मालिक अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह है, हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, हालात के बनाने वाले अल्लाह है। کے لیے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. اور پھر آخر میں اللہ پاک نے جب یہ ساری کائنات بنی تو آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو کیا کیا کہ فرشتوں سے کہا مٹی لے کے آؤ, اور اس مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا, اور اس پتلے میں پھر اللہ پاک نے اپنا حکم اپنے اللہ نے اس میں روح ہوں گے, اور وہ آدم علیہ السلام جیتے جاگتے اللہ نے اس کو اللہ پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد میں جنت میں کچھ ایسا رکھا, اس کے بعد ان کو زمین میں اتارا, زمین پہ اتارا, اور پھر یہاں سے ان کی آگے نسل کو چلایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے. تو ہمارے بڑے آدم علیہ السلام ہمارے بڑے سارے نبیوں کے سردار ہیں, اور اللہ نے اپنے حکم سے اپنے ارادے سے ان کو پیدا کیا اور کائنات کا شہزادہ بنایا. پھر اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا, بنی آدم کو ہم نے قابل اکرام بنایا اور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. فلک کو بھی یہ دیا, ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اتنا بڑا شرف ہے. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھ سے بنایا, فلک کو بھی یہ دیا, اور ساری کائنات کا شہزادہ بنایا, اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. اللہ نے نبی بنایا تو کیا کہتے ہیں, جیسے وہ پہلے فوسلز بنے, پھر اس سے بیکٹیریا بنے, پھر اس سے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بنے, پھر اس سے بندر بنا, اس سے پھر انسان بنا. کیوں یہی پڑھا نا آپ لوگوں نے, میں بتاؤ تو صحیح نا. اللہ یہ ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا اب ناراض نہ ہونا, آپ نہ ناراض نہ ہونا. اگر میں آپ سے یہ کہوں ارے بندر کے بیٹے ذرا ادھر آؤ بات سنو, خوش ہو جائیں گے نا پہلے آپ کو بندر کی اولاد ادھر آؤ, ارے وہ کاکروچ کے بچے ذرا بات سنو میری, سارے خوش ہو جائیں گے. اللہ بس جس میں انسان کی تحقیر ہے اس کی تذلیل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ خلق تو بھی یہ ہم نے آج اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اتنا قابل اکرام ہے یہ. اور آدم علیہ السلام و السلام کو اللہ نے نبی بنایا, اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ارے نبی کو اولاد بات سنو میری, تو کیا کہہ رہے ہیں, یہ شرف کرامت ہے کہ یہ آپ کو گرایا جا رہا ہے. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم سب آدم علیہ السلام آدم اللہ کے نبی, آدم اللہ کے اتنا اونچا رتبہ, اتنا اونچا مقام اللہ رہ کے جیسا سچ میں کھا کے کہہ رہے ہیں. چار پانچ قسمیں کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو بہترین شکل سے پیدا کیا ہے, بہترین شکل. میں ایک طرف بیٹھ, میں ایک طرف ایک طرف بولتا ہوں, زمین کے اندر اتنی شدید گرمی ہے کہ وہاں گزرنا نہیں رہتا. سردی کر دی کہ وہاں زندہ رہنا برو. تو اچھا کہ اللہ پاک نے یہ نظام سارے کا سارے انسانوں کے لیے بنایا, لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ ساری کائنات تو انسان کے لیے بنی, اور انسان کس لیے بنایا؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا, کبھی اپنے بارے میں ہم نے سوچا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا, میں کس لیے آیا؟ کیوں جی, کبھی اس پہ تحقیق کی, کبھی پوچھا کسی سے جا کے. ہاں, اللہ کی شان ہے, اللہ پاک نے بہت ہی بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمارے پوچھنے کا بھی انتظار نہیں کیا, ہمارے پوچھنے کا بھی انتظار نہیں کیا, اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رہنمائی فرما دی, اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر انسان کو بتا دیا گیا کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا, تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندہ بن کے زندگی گزارو, اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو, اللہ کے بندے بنے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے اللہ کی بندگی, ہاں تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا, اس لیے دنیا میں بھیجا. اب بندگی کس کو کہتے ہیں, بندہ کس کو کہتے ہیں, آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا شرف ہے آپ کو, آپ کو ورثہ کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ورثہ, پہلے اللہ کے بندے ہیں پھر اللہ کے رسول ہیں, پہلے اللہ کے بندے ہیں پھر اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے دیکھا, چلے گی دیکھو ایسے کھانا کھاتے جیسے غلام کھاتے ہیں, آج تو مسلمان کو اللہ کے رسول کا کھانا کھانے کا طریقہ بھی پوچھ لیا, اللہ کے رسول کا کھانا کھانے کا طریقہ, کپڑا پہننے کا طریقہ, اللہ کے رسول کا چلنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, اللہ کے رسول کا گھر میں داخل ہونے کا, گھر سے نکلنے کا, بیت الخلا میں جانے کا, بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ پوچھ لیا. ارے محمد الرسول اللہ, کیسی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ, کیسی محبت ہے, جنہ لباس میں وہ ظاہر ہوتی ہے, نہ کھانے میں ظاہر ہوتی ہے, نہ پہننے میں ظاہر ہوتی ہے, نہ شادی میں نظر آتی ہے, نہ کاروبار میں نظر آتی ہے, کیسی محبت ہے اللہ کے رسول. پیٹ والے کے بعد اللہ کے رسول آتے ہیں, دھکا دے کے نکال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ میری کھیتی میں آ گئے تو مجھے کشن بھی دینا پڑے گا, مجھے آپ کے طریقے پہ زراعت کرنی پڑے گی, میں زرعی یونیورسٹی میں جا کے میں نے پڑھا تھا, اس میں کوئی اس طریقے کو نہیں سکھایا گیا تھا, اس لیے آپ یہاں سے تو نکل جائیں, آپ کی گنجائش نہیں ہے میرے کھیتوں میں, میرے اسپتال میں, میں نے میڈیکل کالج میں پڑھا ہے, وہاں آپ کے طریقے مجھے کسی نے نہیں بتایا, میرے آپ کے طریقے کسی نے نہیں بتایا, مجھے تو لو اینڈ بیلے اور ڈیوڈ سے مجھے پڑھائی گئی تھی, اور کیا نام کو گائیڈنس مجھے پڑھائی گئی, مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے ڈاکٹری کے متعلق کیا طریقے بتائے ہیں. اس لیے اے اللہ کے حبیب, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, لیکن اس اسپتال میں آپ کی گنجائش نہیں ہے, آپ کو دھکا دے کے نکالیں گے, آپ یہاں سے نکل جائیے, آپ جائیے یہاں سے, تشریف لے جائیے ہماری عدالتیں, ہم نے ایل ایل بی کیا, ہم نے لا کا پڑھا, اس کے بعد ہم نے ڈاکٹریٹ بھی کی, اس کے اندر ہم جج بھی بنے ہیں, ہم وکیل بھی بنے ہیں, کسی نے ہمیں عدالتوں کے متعلق آپ کو طریقے بتائے نہیں ہیں, نہ ہم نے کسی سے پوچھے ہیں, اس لیے اللہ کے حبیب آپ کی ہماری عدالتوں میں آنے کی گنجائش نہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیے, نکل جائیے آپ یہاں سے عدالتوں میں, چونکہ آپ عدالتوں میں آ جائیں گے تو ہمیں تو آپ کے طریقے سے عدل کرنا پڑے گا, ہم تو عادی ہو گئے ہیں, 100 سال کے بعد, 90 سال کے بعد فیصلہ ہو, 1924 میں مقدمہ درج ہوا, 2014 میں فیصلہ ہو, ہم تو اس عدل کے عادی ہیں, ہم اس عدل کے عادی ہیں. دلی کی ہائی کورٹ کے سامنے سے بزرگ گزرے, عدالت عالیہ کہتے ہیں, جس کی ہمارے کی تمیز ظلم کے ٹیکسوں کے پیسے سوچے, وہاں سے عدل کیسے نکلے گا, ہم تو اس عدل کے عادی ہیں. اللہ کے رسول آپ تشریف لے جائیے, آپ کی گنجائش نہیں ہے ہماری عدالتوں میں, آپ چلے جائیے, آپ ہر جگہ سے عجیب محبت ہے, عجیب محبت. ہاں مسجد سے چلے جائیں, وہاں موقع ملے گا کبھی زندگی میں, عید والے دن آ جائیں گے, کبھی جو ہے تشریف لے جائیے, آپ کی گنجائش نہیں ہے ہماری عدالتوں میں, آپ چلے جائیے, آپ ہر جگہ سے عجیب محبت ہے, عجیب محبت. ہاں مسجد سے چلے جائیں, وہاں موقع ملے گا کبھی زندگی میں, عید والے دن آ جائیں گے, کبھی جو ہے وہ جمعے کے دن اگر کوئی تکلیف ہوئی تو آ جائیں گے آپ کے پاس, ہمیں آپ سے ملنے کی بھی فرصت نہیں, ہم تو مصروف ہیں, ہم مصروف, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो हमें ये लड़कों लड़कियों का इकट्ठे बैठना ही खत्म करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल आपसे यहाँ से निकल जाइए, आप चले जाइए यहाँ। आप अगर यहाँ आ गए तो हमें तो आप अगर हमारे पास आ गए तो हमें तो आपके तरीकों को देखना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म को देखना पड़ेगा। बस हमें आपसे मोहब्बत बहुत है, जुलूस भी निकालेंगे हम आपके लिए, नारे भी लगाएंगे हम आपके लिए, हम तोड़ फोड़ भी करेंगे आपके लिए, मोहब्बत बहुत है हमें आपसे, अजी मोहब्बत। अरे मोहम्मद हम एक जगह गश्त कर रहे थे तो कुछ नौजवान ग्राउंड थी उसमें, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सभी ने तक एक जैसे जूते और जराबे पहने, पुरानी बात है। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है एक जैसे तुमने, तो थोड़ा सा खामोश हुए। उसके बाद एक उनसे से कहने लगा कि जी यूरोप का गाना गाने वाला माइकल जैक्सन, क्या ये उसका डिजाइन उसका पैसा, हमने उसको प्यार किया होगा। अल्लाह मुझे वो वाक्य याद आ गया उनके जवाब से, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे जो बैठे थे तो फिर उमर रजी अल्लाह को किताब लिख जाए और पढ़ रहे थे और आते आज हुए या रसूलुल्लाह तो रात के पुत्र से किया दानी अलैहि वसल्लम से क्या या रसूलुल्लाह आप जो बातें हमें बताते रहते हैं उस किस्म की बातें इनके यहाँ भी लिखी हुई, इसमें भी लिखी हुई। तो आपने देखा और सुनाया कि आपकी चेहरे का रंग बदल गया, सुख हो गया और गुस्से में आप अल फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह देख रहे थे और समझ गए, कहने लगे कि उमर तेरी माँ तुझे रोए, तेरी माँ तुझे रोए देख कर ही अल्लाह के रसूल गुस्से में है, नाराज हो गए। फौरन किताब को मैंने किया और कहा मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुस्से से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। और अभी तक मौके में पड़े हुए, अभी तक मौके में पड़े हुए, ये सामने किताब यानी मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, ये वो नबी है जिसका अल्लाह ने 29 बारों में जिक्र किया है कुरान। और इतने बड़े नबी हैं, इतने बड़े नबी जो कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करने वाले हैं, इतने ऊंचे इतने ऊंचे मुकाम के नबी हैं, अगर ये सामने किताब मूसा अलैहिस्सलाम ये भी आज दुनिया में तशरीफ ले आए, इनकी भी निजात मेरे पीछे चले बगैर नहीं होगी। आज का मुसलमान, आज का नौजवान माइकल जैक्सन के पीछे चल के कैसे कामयाब हो सकता, अल्लाह के रसूल को छोड़ इसका मैं याद एक असेंबली में पुरानी बात है 20-25 साल पहले, यहाँ की एक सफाई असेंबली थी या पता नहीं कौन थी, उसमें कोई झगड़ा हो गया और उसमें एक दूसरे की मारपीट। अगले दिन बाजू ने कहा कि जी वो यूरोप की असेंबली में भी ऐसे हो जाता है, अमेरिका की असेंबली में भी ऐसे हो जाता है, भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की असेंबली में तो पूछ लो वहां क्या होता है, उनके मशवरे को भी देख लो वहां कैसे होता है। मोहम्मद रसूल नहीं मेरे दोस्तों भाइयों, हम मोहम्मद ही हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के चलेंगे, वो हमारे लिए मैयार है, वो हमारे लिए नमूना है।
अल्लाह की बना में आता हूँ और अल्लाह ने बोला अभी तक मौके में पड़े हुए,
کبھی میں تم کو پڑھوں. یہ ساتویں کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام و السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کا اللہ نے 29 باروں میں ذکر کیا ہے قرآن. اور اتنے بڑے نبی ہیں, اتنے بڑے نبی جو کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں, اتنے اونچے اتنے اونچے مقام کے نبی ہیں. اگر یہ ساتویں کتاب موسیٰ علیہ السلام یہ بھی آج دنیا میں تشریف لے آئے, ان کی بھی نجات میرے پیچھے چلے بغیر نہیں ہو. آج کا مسلمان, آج کا نوجوان مائیکل جیکسن کے پیچھے چل کے کیسے کامیاب ہو سکتا؟ اللہ کے رسول کچھ ہو اس کا معیار. ایک اسمبلی میں پرانی بات ہے, 25 سال پہلے یہاں کی ایک صوبائی اسمبلی تھی یا پتہ نہیں کون سی, اس میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور اس میں ایک دوسرے کی مار پیٹ. اگلے دن بازوں نے کہا کہ جی وہ یورپ کی اسمبلی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے, امریکہ کی اسمبلی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. بھائی محمد رسول اللہ کی اسمبلی بھی تو پوچھ لو وہاں کیا ہوتا ہے, ان کے مشورے کو بھی دیکھ لو وہاں کیسے ہوتا ہے. محمد رسول میرے دوستوں بھائیو, ہم محمد ہی ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلیں گے, وہ ہمارے لیے معیار ہے, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے.
طریقے دے کے بھیجا, اور 23 سال کی زندگی میں ایسی برکت دی ہے, ایسی برکت دی ہے.
कि देखो एक आदमी डॉक्टर तो बहुत शानदार है, बहुत ऊंचे दर्जे का है, लेकिन घर में बीवी के साथ झगड़ा रहता है। अच्छा एक आदमी चांसलर रिवाइज चांसलर तो बहुत शानदार है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम कर लेता है, लेकिन पड़ोसियों के साथ उसका झगड़ा रहता है, पड़ोसियों का कभी उसने कोई हक अदा नहीं किया। एक लाश है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो जिंदगी के हर पहलू के एतबार से काबिल है, मुकम्मल हर पहलू के एतबार से, और आपकी जिंदगी के हर पहलू को अल्लाह पाक ने महफूज फरमा दिया। दुनिया में किसी नबी की कब्र महफूज नहीं है, यकीन से नहीं कह सकते कि आसार है। बात जो कहते हैं अपना जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, अपना जगह जो है जो कहते हैं अल्लाह जानते हैं, लेकिन यकीनन कोई नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है जिसको अल्लाह ने 100% महफूज कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मियार बनाया, नमूना बनाया, अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान को अल्लाह ने महफूज कर दिया, और ऐसे महफूज किया और खुद उसकी हिफाजत का वादा किया। तीन जगह अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया है, तीन जगह चैलेंज किया सारी दुनिया के इंसानों में, तीन जगह। हमें तो कुरान देखने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, अल्लाह पाक गिला करते हैं, अल्लाह गिला करते हैं कि मेरे बंदे तेरे दोस्त का खत आ जाता है, तेरे दोस्त का खत आ जाता है, और तुम उसको रास्ते में मिलता है, रास्ते के किनारे बैठ के एकदम पढ़ने लग जाते हो कि मेरे महबूब ने मेरे दोस्त ने क्या खत लिखा है, क्या बातें लिखी है, और मेरे कुरान की आयतें, मेरा कुरान, मेरे कुरान की आयतें तेरे सामने गुजरती हैं और तुझे उसको देखने की फुर्सत नहीं। बस आगे अजीब जुमला है, अजीब जुमला है आगे कि मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्तों से भी ज्यादा गरीब हूँ। केमिस्ट्री पढ़ने का वक्त है, फिजिक्स पढ़ने का वक्त है, बायोलॉजी पढ़ने का वक्त है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का वक्त है इनके पास, और जियोलॉजी पढ़ने का वक्त है, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए 24 घंटे इनके पास है। अजी मेरा इम्तहान है, अजी मुझे तैयारी करनी है, अजी मेरा टेस्ट है, अजी मेरी वो, और कुरान देखने के तेरे पास वक्त नहीं है। तो तुझे ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे नजदीक हाँ तेरे सारे निजामों से ज्यादा गिरा पड़ा हूँ, ज्यादा नजदीक। तीन जगह अल्लाह ने चैलेंज किया, तीन जगह चैलेंज, एक पारा रोज पढ़ लो 15-20 मिनट आधा घंटा, और उलमा के पास जाके कुछ उसको सीखो। इस कुरान कुरान चाहता है क्या है कि सारी दुनिया के लोग मिल जाओ और मिल के इस कुरान जैसा ही कुरान बना के दिखा दो, चैलेंज करें। 1500 साल गुजर गए, अच्छा तुम कुरान क्या बनाओगे? सारे मिल जाओ, हम इसके अरबी के साथ मुनासिबत नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है और क्या उसमें एजाज और मौजदा क्या है, तो मौजदा है। तो दूसरा चैलेंज किया, अच्छा ऐसे करो इसमें से कुछ 10 सूरतें ले लो और उस जैसी 10 सूरतें दिखा दो बना के। अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते, तो ऐसे करो कोई एक सूरत ले लो, कुरान की एक सूरत ले लो, सारे मिलजो जिन्नात को फरिश्तों को जिसको चाहे सार मदद के लिए शामिल कर लो और इस जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। वलन तफा, तुम हरगिज नहीं कर सकते हो, पर जब नहीं कर सकते हो तो डरो उस आज से जिसका इज्जत पर फरोला भी इंसान वहां हरम में बैतुल्ला से अरबों के हाँ यानी असल में अरब के अलावा जो है उनको सबको वो अजब कहते हैं। अरब शुरू से यानी जुबान तो असल अरबी है, बाकी तो अजम यानी होंगे, बाकी सब जुबानें होंगी, और ये इसमें कोई शक नहीं है। जब जुबानों का तकाबल करते हैं देखते हैं तो अरबी से ज्यादा फस्ती और बलीग जुबान कोई नहीं, इतनी जामे जुबान कोई नहीं, बाकी सब उसके मुकाबले में सब अजमी, सब होंगे नजर आते हैं। अजम कहते होंगे को सब होंगे नजर आते, तो अर्ज है वो लगा देते थे जो उसमें शायरों का मुकाबला होता था, और जिसकी नजम जिसकी शायरी सबसे अच्छी होती थी उसका कलाम बैतुल्ला में लटका दिया जाता था। तो एक शायर का दर्पण वहां लटका हुआ था जो सबसे अच्छा, किसी को क्या सोची उसने कुरान पाक की जो सूरत कौसर है ना 3 आयतों की, उसको लिख के उसके साथ लटका दिया। उस तक भी खबर पहुंची। वो गुस्से में बना रहे थे, मेरे के नाम के साथ बगैर मुकाबले के किसने आगे लगा दिया, कौन ये जरूरत वाला है। आगे उसने देखा पड़ा उसको, इन्ना आवदा इन्ना जलसा उसका सस्ती से रस्ती का वन आज इन नशा निहा का उवल अब था कितनी राय के पड़े। ये जो उसने एक जुमला लिखा उसकी तरफ, वमा आदा कौदुल बचर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है और अपना उतार के ले गया। अल्लाह ने कुरान दिया, उस कुरान में अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए, उसके जाब्ते बताए, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी गुजारने की अमलन उसकी तफसील बताई है कि कैसे मुसलमान को जिंदगी गुजारनी, कैसे मुसलमान को दुनिया में रहना। ये इंसानी जिंदगी है, ये इंसानी जिंदगी है, और जो हुकूक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताए हैं ये इंसानी हुकूक हैं। इसके अलावा अगर ये जिंदगी नहीं है, उलाएक कल अनाम, अल्लाह के नजदीक वो जानवर है, जानवरों से बदतर, बल्हुम अज़ल, जानवरों से बदतर। जिनके अंदर ये इंसानी जिंदगी, ये इंसानी जिंदगी है जो कुरान ने बताई है, जो अल्लाह के रसूल ने बताई है, जो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अमल करके दिखाई, ये इंसानी जिंदगी है। इसके अलावा कोई इंसानी जिंदगी नहीं, ये इंसानी जिंदगी है। इंसानी हुकूक यही है, ये इंसानी हुकूक है। और ऐसी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जिंदगी, दुनिया का कोई इंसान, कोई इंसान, ताजर, जमींदार, मुलाजिम, हाकिम, वजीर, डॉक्टर, बादशाह, फकीर, किसी हाल में हो, औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, जवान है, भूखा है, नंगा है, बीमार है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा, किसी हाल में है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 बरस देखे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 बरस देख लिए हैं और मुझे अपने लिए जिंदगी गुजारने के उसूल नहीं मिले। कोई इंसान ये नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल ये है कि वो पूछे तो सही। मेरे पास एक साहब एक दफा आए, कहने लगे कि डॉक्टर के कहाँ लिखी हुई ये बातें जो आप कह रहे हैं। बात ये है कि जहाँ ये लिखी हुई है, जहाँ ये लिखी हुई है उनको तो हम पढ़ते नहीं, और पढ़ना क्या उनकी समझने की भी इस्तेदाद नहीं है, उनकी तो समझने की भी इस्तेदाद नहीं है। और जिनके पास वो उलूम है उनके पास जाने का हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त वो भी तो वो तो ऐसे है, मौली साहब इसको क्या पता, मौली साहबान को क्या पता, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे क्या पढ़ा है, मखलूक को पढ़ा है, और उससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है, मखलूक से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। बिस्ट केमिस्ट्री वैसे बैठ क्या है कि वो सिपुर केसर को उसके साथ मिलाओ, उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाओ तो क्या बनेगा, उसको गैस को उसके साथ मिलाओ, एसिड के साथ मिलाओ तो क्या पानी बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को पानी से मिला दो, ये जोड़ तोड़ ही पड़ा है ना जी, और उसने क्या पढ़ा, मखलूक से फायदा उठाना, मखलूक से फायदा उठाने के तरीके। बात ये मैंने की अल्लाह ने दो तरह के उलूम आसमानों से उतारे, दो तरह के उलूम उतारे। एक उलूम वो है जिनका ताल्लुक इंसानों की जरूरतों के साथ और उनकी नफी नहीं है, वो गलत नहीं, इस बात से ये दास ना लिया जाए कि सब गलत है। अल्लाह ने उनको इंसानों की जरूरियात के साथ जोड़ा है, इंसान की जरूरियात के मुतालिक उलूम है। और दूसरे उलूम वो है जो इंसान की जिंदगी का मकसद बताते हैं और उसको बाद आखिरत में उसके कैसे हालात दुरुस्त होंगे, दुनिया के हालात कैसे दुरुस्त होंगे, उसके जाब्ते और उसूल बताते हैं। ये दोनों तरह के उलूम अल्लाह ने दिए, अल्लाह ने उतारे हैं, लेकिन एक फर्क है, ये जो जरूरियात से मुतालिक उलूम है इनकी तो बुनियादें अल्लाह ने नबियों के जरिए से दी है। मसलन हल चलाना, बीज डालना और जमीन में तकल्ला हासिल करना, इसका इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया है। और रुई का धागा बनाना, उसका कपड़ा बनाना और उसको फिर आगे लिबास बनाना, इसका इल्म रुई धागे का ये इदरीस अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने दिया। और दरिया में कैसे चलना है, कश्ती का इल्म अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया। बर्तन बनाना और लोहे को ढालना, उससे अपनी जरूरत की चीजें बनाना, लोहे की धातुओं का जो इल्म है ये अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया है, इब्तिदा उनके जरिए से। बर्तन मट्टी के बर्तन बनाने का फन अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया है। تو مختلف نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان علوم کی ان کی بنیاد کی انسانوں کو دی ہے. اور یہی انسانوں کی ضرورت کی چیزیں, دیکھو پانچ ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کی, کھانا پینا, لباس, سواری, رہائش اور نکاح, یہ پانچ ضرورت کی چیزیں ہیں ہر انسان کی.
www.dawatabligh.blogspot.com
کتاب لے جا رہا. ملازمت کے کیا اصول ہیں, ملازمت کے کیا کمات ہیں, ملازمت کا کیا طریقہ ہے, ملازم رکھنے کے کیا اصول ہیں, کیا صفات اس میں دیکھو, اس کی تنخواہ مقرر کرنے کے کیا اصول ہیں اس کو, اور ملازم جو ہے مالک کے ساتھ کیسے چلے گا, مالک ملازم کے ساتھ کیسے چلے گا. وہی چھوٹی سی ایک عام حدیث مثلا اکثر آپ بازار میں سنی ہوگی نا, کہتے ہیں کہ جو مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. مالک کو بھی بتا دیا ادب اور اس کو ملازم کو بھی بتا دیا کہ دل لگا کے محنت سے کام کرو, پہلے تمہارا پسینہ نکلا, یعنی پوری 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 قوت اپنی استعمال کرو. اب اور تفصیل ہے پھر آگے جس میں مجسم کے اشارہ کرتا ہوں. تو کتاب لے جا رہا ہے, ملازمت کے اصول بتائے, کتاب القضاء عدالتوں کے اصول بتائے کہ ادب کیسے ہوگا, گواہی دینے کے کیا اصول ہیں, گواہی دینے کے کیا اصول ہیں, قاضی کے لیے کیا آداب ہیں, وکیل کے لیے کیا آداب ہیں, مقدمہ لانے والے کے لیے کیا اصول ہے, مقدمے کا فیصلہ کرنے والوں کے لیے کیا اصول, وہ سارے اصول تفصیل ہے کتاب القضاء. اور اسی طرح اس میں تو حکومت چلانے کے اصول ہیں, کتاب السیاست, حکومت چلانے کے کیا اصول ہیں, کتاب اللباس ہے, کتاب السبل ہے, اسدہ چلانے کے کیا اصول. تین حصے اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے ایک حصے میں ساتھ ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق ہماری رہنمائی نہ کی, اس لیے حضرات صاحب اپنا بڑے فخر سے کہا کرتے تھے, فخر سے کہتے تھے کہ ہاں ہاں آسمان میں پرندہ اڑتا ہے ہمیں معلوم ہے, جب وہ پر بند کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور جب پر کھولتا ہے تو ہمیں معلوم ہے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا, دیکھو یہ تمہارا نبی جو ہے یہ عجیب بات ہے, یہ تمہیں سجا کرنے کے اور کھانے پینے کے طریقے بتاتا ہے, سجا کرنے کے کھانے پینے کے طریقے بتاتا ہے, یہ عجیب بات ہے, یہ نبیوں کے بتانے کے کام ہے. اللہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو احساس کمزوری میں نہیں گئے, ڈیفینسو نہیں ہوئے, سپاہی نہیں ہوئے کہ جی ہاں ہاں کیا کریں, بس ہم نے داڑھی رکھ دی تو بس ہم تو مجرم بن گئے, جی سارے لوگ باتیں بناتے ہیں مجھے, میں شلوار لگا کے اوپر اپنے اوپر رکھوں گا تو کیا کہیں گے, میں اپنی نظریں جو ہے غیر محرم کے سامنے اٹھاؤں گا نہیں, غیر محرم میری ٹیچر ہے وہ ناراض ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا. نہیں نہیں نہیں, وہ معذرت خانہ رویہ نہیں تھا, انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں تھا, احساس کمتری نہیں تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے نا, وہ کیلا جو ہے وہ نیچے گرا, وہ پھل نیچے گرا, اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھانے لگے تو کہا کہ ایسے ذرا نظر سے دیکھا تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ زمین پر سے پھل اٹھا کے کھا لو, اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو کیا کہا کہ آج لوگ سننا تھا حبیب لہٰذا کو مکہ, اس احمقوں کی وجہ سے جن کے پاس ایمان نہیں ہے, جن کے پاس دین نہیں ہے, جن کے پاس اسلام نہیں ہے, اللہ سے جانور کہتے ہیں, انہوں نے تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کیا, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر اللہ نے ایسے رسول بھیجے ہیں جو ہماری ایک ایک چیز میں ہماری رہنمائی کر, ایک ایک چیز میں ہماری رہنمائی کر. ہمارے ایک استاد ہوتے انتقال ہو گیا ان کا, ہمارے بزرگ سے ہمارے تو کالج میں پڑھتے تھے, اس وقت وہاں فزیشنز کی کانفرنس تھی امریکہ میں, تو وہاں ہوتے سیکھے گئے. تو وہاں جب ڈنر رات کا جو کھانا تھا اس میں جب بیٹھے ان کے انہوں نے سنت طریقے سے پلیٹ کو اپنی صاف کی, پلیٹ کو صاف کیا سنت طریقے سے. تو ان کے ساتھ ایک رحمت ہوتا ہے جو بیٹھا تھا اس نے تھوڑا اعتراض کیا, کہنے لگا کہ برے طریقے سے آپ نے کھانا کھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, دس از دا بیسٹ ڈش, جو سب سے اچھا طریقہ کھانا کھانے کا. اسے پوچھا کیسے, کہنے لگے کہ دیکھو میں نے پلیٹ میں کھانا پلیٹ میں صاف کر دیا, تم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا برتن میں چھوڑ دیا. اب امریکہ کی آبادی 125 کروڑ کے قریب, अमेरिका की अमरीका की आबादी 25 करोड़ है, हर आदमी थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ता है, ये सारा खाना दोबारा से इस्तेमाल होता है, कचरे में चला जाता है। पहला नुकसान तो ये हुआ कि जितने जमींदारों ने, किसानों ने हल चलाए, दिए जाते पानी लगाए, मेहनत की और फसल तैयार की और उसको काटा, उसको कहा उन्होंने, तो वो तुमने उन सबकी मेहनत को कचरे में फेंक दिया। दूसरा नुकसान ये किया कि जिन्होंने उसको खरीदा, काटा, पकाया, तैयार किया, सजाया, तुम्हारे सामने लाके रखा, उनकी मेहनत ही कचरे में फेंक दी। अगर इस सारे को तुम जमा कर लेते और जमा करके इसको उस वक्त सोमालिया में या अफशा में क्या था, अगर तुम सारे खाने को वहां पहुंचा देते तो कितने लोग जो भूख की वजह से मर रहे हैं, क्या उसमें तुम उनको बचा नहीं सकते? ये तो तुमने इज्तमाही बड़े बड़े नुकसान किए थे। आगे आ जाओ तो कहने लगे कि देखो ये बर्तन फौरन तो उसमें याद जब खाने में रखे जाएंगे फौरन तो साफ नहीं होते। कितने किचन अंग्रेजी के लोग स्टोर इधर बचना है फरमाते थे कि देखो बूटों में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करने से कि ईमान में रोक आता है। उर्दू बोलो तो उर्दू बोलो, ये इंसान से कमजोरी की है ना, मैं उर्दू कि अपनी जुबान के अंदर दूसरी जुबान को शामिल कर लें, अपनी जुबान के अंदर दूसरी जुबान के अल्फाज शामिल कर लेना, ये दिनी गुलामी की नाम है। हम जब उर्दू बोलो तो हाँ किसी जगह तो रोज है उर्दू से तर्जुमा करना है कि बात करनी है, ठीक है, डर के दूर भी उसका इनकार नहीं, लेकिन जब उर्दू में बात करो तो फिर उर्दू में बात करो, उसके अंदर इसकी पैमानकारी ना करें, उसकी पैमान ना लगाए। जैसी तौर पर अपनी गुलामी जाहिर करता है तो खैर तो बातचीत में आ गई। वो उन्होंने जो है वो कहा कि बर्तन जो है जब बर्ती खाने में रखे गए तो फौरन तो धोते नहीं है, थोड़ी देर लगती है, 2-4 घंटे पड़े रहे, अब उनके ऊपर जब कीड़े मकोड़े आएंगे तो तुम्हारे बर्तनों पर आएंगे या मेरे बर्तन पे आएंगे? कहा कि हमारे बर्तनों पे आएंगे। कहने लगा अच्छा कीड़े मकोड़ों से जो जराजीम और जो बीमारियां फैलेंगी तो तुम्हारे बर्तन दरिया बने या मेरा बर्तन दरिया बना? कहने हमारे बर्तन। कहने अच्छा क्योंकि वो जो बर्तन उनको साफ करने में मुशक्कत और मेहनत से साफ करने वाले की गर्ज ज्यादा तुम्हारे बर्तनों पर खर्च होगी मेरे बर्तन में, मैं हमारे बर्तनों पर। कहने लगे साबुन और गर्म पानी तुम्हारे बर्तनों पर ज्यादा खर्च होगा मेरे बर्तन पे? कहने लगे हमारे बर्तनों। कहने लगे कि अब तुम ही बताओ कि खाना खाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? अब उसकी गर्दन मेज के साथ लगी हुई, कहने लगा नो दिस द बेस्ट वे, नहीं ये सबसे अच्छा खाना खाने का तरीका है, काश मुसलमान को भी समझ आ जाए, हमें भी समझ आ जाए। तो जिंदगी गुजारने के हर पहलू से अल्लाह के रसूलने वाली रहनुमाई, हाँ ईमान के साथ यकीन के साथ चलना कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया, हम इनकी मसलहतों में नहीं जाएंगे। ये तो उन्होंने समझाने के लिए इसको कह दिया, इसकी मतलब मुसलमान के लिए इतना काफी है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह के रसूल का तरीका है। अजान हो गई, मुझे मस्जिद में जाना है, मुझे किसी चीज को नहीं देखना, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो शख्स नमाज का इस्तेमाल करेगा मैं अल्लाह उसकी रोजी में बरकत देगा, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में दाखिल करूंगा, मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया, मुझे मस्जिद में जाना है। हमारे एक बुजुर्ग से जर्मनी तशरीफ ले गए तो वहां कुछ नौजवान मुसलमान उनसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने एक सवाल किया, कहने लगे कि जी ये बताइए कि ये सोर क्यों हराम है, सोर जो खंजीर है ये क्यों हराम है? इन्होंने कहा कि अल्लाह ने हराम किया है, अल्लाह ने इसको हराम किया है। कहने लगे नहीं ठीक है अल्लाह ने हराम किया, लेकिन क्यों किया अल्लाह ने हराम किया? इन्होंने फिर कहा कि अल्लाह ने हराम किया है, अच्छा उसकी वजह क्या है? कि गाय जो है वो भी जानवर है, खजीर भी जानवर है, वो भी गोश्त है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, उसमें भी हड्डियां हैं, इसमें भी हड्डियां हैं, तो ये क्यों हराम है, वो क्यों हलाल है, हमें फर्क बताए। इन्होंने फिर कहा कि भाई देखो अल्लाह ने हराम किया, अल्लाह ने हराम किया, और फिर आगे एक बात भी कहने लगे कि देखो तुम्हारी जर्मनी की हुकूमत ने ट्रैफिक सिग्नल बनाए हुए हैं, उसमें कहा कि लाल इशारे पे, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकेगी और सबर पे चलेगी। कभी जाके उनसे जर्मनी से पूछा है तुमने कि जी पहले मुझे ये बताओ कि लाल बत्ती पे क्यों गाड़ी रोके, कि सबल पे क्यों चलाएंगे, फिर मैं इस कानून को मानूंगा। तो पूछा जाते डॉक्टर के पास तुम जाते हो और डॉक्टर से जाके कहते हो कि जी डॉक्टर मेरे सर में दर्द हो रहा है और उसके लिए मुझे मैं क्या करूँ, सर में दर्द। डॉक्टर ने देखा क्या कोई ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जो भी था, उनको दवाई बता दी कि ये दवाई दवाई दे दी उनको। ये उसने कहा डॉक्टर साहब क्या बात थी, दर्द तो मेरे सर में है और आप दवाई मुझे दे रहे हैं, दवाई मैं मुंह पे खाऊंगा, पेट में जाएगी, पखाने से बाहर निकल जाएगी, ये मेरे सर दर्द को क्या करे, तो इस सर दर्द की वजह क्या है पहले मुझे ये बताइए, फिर इसका जो है वो दवाई वहां जाके किस जगह काम करेगी, कैसे करेगी, क्या उसका तरीका, मेरी समझ पहले मुझे समझाए, पहले मुझे समझाए, मेरी अकल में आएगा, मेरी रिसर्च में आएगा, मेरी तहकीक में आएगा, फिर मैं आपकी बात मानूंगा। डॉक्टर क्या कहेंगे, क्यों जी बैठेंगे ना, क्यों डॉक्टर बैठो मुझे समझाने के लिए, बैठेंगे समझाने के लिए, आ जाओ। हाँ क्या कहेंगे, अरे आप यहाँ से मैं तक लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता वरना आप लोग खुशी आती है ना जी, कहते हो ठीक है ना, नहीं कहते हो ठीक है, मैं आपसे सीख ले जाएगा जरा मौसम किस्म का होगा तो ये कहेगा, और अगर तो मेरे जैसा होगा तो दफा हो जाओ यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है इसके लिए, मेरे पास मैंने लगाए हैं इसको सीखने में, इसको सीखने में 25 साल लगाए हैं, 20 मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब जाओ उसके पास। अपने जैसे बनाए हुए इंसान, उनके बनाए हुए कानून, उनकी बताई हुई तहकीक, उस पर तो आंखें बंद करके चलते हो, और अल्लाह के बताए हुए अहकाम, अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम, उनके बताए हुए तरीके, उसमें जाके कहते पहले हमें समझाओ फिर इस पे चलेंगे, तो है अकल की बात। ये बात करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि बाकी तुम्हें समझाने के लिए एक बात अर्ज कर देता हूं, इसमें हमें पढ़ना नहीं है, ईमान का तकाजा ये है, ईमान कहते इसको है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खबर पर सिर्फ इस वजह से उन पर एतमाद करके कि जो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बस, हमें और कुछ नहीं देखना, वो सच है, पक्का है, यकीनी है, हमें उस पर चलना है, हमें किसी चीज को नहीं देखना। बाकी कह लगे कि जानवरों के जो उलूम, जानवरों को जो उसके जो मुताला करने वाले लोग हैं, उनकी जो नफ्सियात को जो पढ़ते हैं, किताबुल हैवान आज से 1200 साल पहले लिखी गई, 1300 साल पहले इमाम ज़मीरी ने लिखी, 1200-1300 साल पहले, उसमें 2 जिल्दों में है और पूरी तफ़सील है जानवरों की, जिस जानवर की क्या नफ्सियात है, उसके मुतल्लिक क्या क्या आशा है। तो हम तो आज तहकीक कर रहे हैं जानवरों की, ये तहकीक हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर वाले ने क्या किया है, जब जुबान से जब बीच में हिजाब आ जाता है ना जी, तो यूं लगता है कि सारी सारे यानी ये सारे फनून जो है ये आज यूरोप में ही उतरे हैं, और आज से 1000 साल पहले 1200 साल पहले से जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने नहीं। तो अब वो जानवरों की नफ्सियात को जानने वाले वो कहते हैं, उनके जो आदात और अजमान को जानने वाले, ये जानवरों में से सबसे बेगैरत और बेहया जानवर उसकी माता खड़ी हो जाती है और एक लाइन में जो है नाराते हैं और उसका जो है वो देखता रहता है सारे मतलब, और अपनी वो बाइक पूरी करते और आगे चलते जाते हैं, ये उसकी, और किसी जानवर में इतनी बेगैरती नहीं होती। बस गर्मी में बाहर से आए हो, ठंडा गिलास शरबत कर दिया या पानी का पिया ठंडे गिलास, थोड़ा कुछ देर जो है आदमी की बदल जाएगी, जड़ा पानी उसका होता खत्म हो जाता है, भाई इसको ठंडा पानी पिलाओ, उससे क्या मतलब कि ठंडा पानी पीने से उसकी तबीयत सर्दी है, अकड़ है, चिढ़ रहा है, और अब फौरन एक कप चाय का कावे का पिया तबीयत उसकी बेहतर हो जाती है, होता है कि नहीं। तो ये जो आदमी पानी का एक एक कप पिया, उसने एक गिलास पिया, ठंडा पानी गर्म पानी, इसने उसके मिजाज को बदल दिया, तो जो वो जिसम का जाते हिस्सा बनेगा, बताओ वो इंसान के किरदार को, इंसान के अखलाक को, उसकी जो आदतें हैं उनको कितना बिगाड़ेगा। तो फिर इसके बाद कहने लगे कि तुम सारी दुनिया में नजर डाल के देख लो कि जो कौमें इसका गोश्त खाते हैं उनकी जिंदगी का क्या हाल है, हम उसकी तफसील में नहीं जाते, वो देखो। अब अल्लाह ने हुक्म दिया है हमारे लिए इतना काफी, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, तरीका बताया हमारे लिए इतना काफी, हमें और किसी चीज को नहीं देखें। ایمان کا تقاضا یہ ہے. اذان کا وقت ہو گیا, ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چلیں گے. لیکن نماز کفر و اسلام میں فرق ڈالتی ہے, نماز کفر و اسلام میں فرق ڈالتی ہے. اور جس وقت میں نماز کا وقت آ جائے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہمیں ہماری کلاس میں لیکچر ہو رہا تھا, ہمارے ایک استاد تھے, وہ نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا, اذان ہوئی تو بہت تنگ ہوتا جا رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ سر نماز کا وقت ہو گیا, نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے, پھر دوسرا تھوڑی دیر کے بعد سر نماز کا وقت ہو گیا ہے. ان کا کیا, میں جلدی جلدی 5 منٹ میں لیکچر پورا کر لوں, ٹاپک جو ہے تو ختم کر لوں. تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر تیسرا کھڑا ہو گیا کہ سر قیامت کے دن, یہ ہے ایمان, قیامت کے دن میری جگہ کے اللہ کو آپ جواب دے دیں گے. مطلب وہ بھی ایمان والے سے کریں, نو جاؤ. تھوڑا سا ہمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ہمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہمارے وہاں استاد میں ایک نوجوان تھا, تو راؤنڈ ہوتا ہے شام کو, اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس نے اپنے استاد کو بتایا کہ جی نماز کے وقت ہوئے, میں جا رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد وہ ذرا ناراض ہو گئے اس بات پر کہ میرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے, ادھر یہ نماز کے لیے کدھر جاتا. نے کہا جی بات یہ ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے, تو ہم جو ہے اس کو کہنے راؤنڈ کے بعد نہیں نماز پڑھی جا سکتی, یعنی کہ نماز کے بعد راؤنڈ نہیں کر سکتے ہم, یا نماز کے بعد ہم راؤنڈ نہیں کر سکتے. دیکھو ایمرجنسی کوئی اس قسم کی کوئی ایسے حادثہ ہو گیا, اس کے احکامات تو شریعت میں بدل جاتے ہیں, بعض موقعوں پر نماز بھی چھوڑنی پڑتی ہے, وہ حالت مند حکم ہے. لیکن معمول کے طور پر ارے باقی ساری چیزوں کو آگے رکھو, نماز کو پیچھے کرو, یہ سمجھ سے بات ہے. تو انہوں نے ذرا ناراضگی کا تھوڑا اظہار کیا اس پر. یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے کوئی حال آج نماز کا اہتمام نہیں, نماز کفر و اسلام میں فرق ڈالتی ہے. پرانا واقعہ ہے, میرے لاہور میں ایک مارکیٹ ہے برانتھر روڈ, تو وہاں اکاڑا کے کچھ دو بھائی کچھ سودا خریدنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ ان کا ایک بار ملنے والا ایک غیر مسلم تھا ہندو, وہ بھی آیا. تو وہ سامان کچھ دکانوں سے لے رہے تھے, تو اتنے میں زہر کی نماز کا وقت آ گیا. تو اذان ہوئی, انہوں نے اس سے کہا کہ میں مسجد جاتے ہیں نماز پڑھ کے, تم یہاں دکان پہ بیٹھو. نماز پڑھنے کے واپس آئے تو انہوں نے اس ہندو سے پوچھا کہ چلنے لگے, ہندو نے ان سے پوچھا, کہنے لگا کہ جی ایک سوال پوچھنا ہے. کب پوچھو, کہنے لگے یہ مارکیٹ میں جتنے بیٹھے ہیں کہ یہ سارے ہندو ہیں. کہا کہ نہیں, یہ تو مسلمان ہیں. کہا کہ نماز اذان ہوئی, نماز کا وقت آیا, نہ یہ مسجد میں گئے نہ میں مسجد میں گیا, مجھے تم کافر کہتے ہو, اس کو مسلمان کہتے ہو. اب اس سوال کا کہنے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور اللہ کے شکر ہے بعض لوگوں پہ, ہم سوڈان کے ہوائی اڈے سے باہر نکلے تو یہ 98 کی بات ہے, ہوائی اڈے سے باہر نکلے تو وہاں اندر جب داخل ہوئے, جو جہاں پاسپورٹ وغیرہ دیکھتے ہیں نا, امیگریشن جس کو کہتے ہیں, وہاں جب پہنچے تو ایک آدمی بھی نہیں, سارے اس کے سب خالی پڑا ہوا ہے, یہ بھی بات ہے. اور ایک آدمی وہ بیت الخلا صاف کر رہا تھا, جھاڑو دے رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ عملہ سارا کہاں چلا گیا, تو بڑی خوشی ہوئی اس کے جواب سے, کہنے کہ سب جمعہ پڑھنے گئے ہوئے, سب جمعہ پڑھنے گئے. ابھی وہ اور 15 منٹ میں جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے آ گئے. ہم نے کہا اس دوران ہم استجاب وضو وغیرہ کر لیتے ہیں. ہم وضو سے فارغ ہوئے, آتے ہی انہوں نے فوراً وہ بور وغیرہ لگائی اور ہم نے انہوں نے اندر بھجوا دیا. اور سوڈان میں ہم نے دیکھا ہر گھر میں, ہر دفتر میں, ہر گھر میں, ہر دفتر میں اور ہر اسکول کالج میں وہاں وضو کے لیے ٹوٹیاں لگی ہیں, وضو کے لیے ٹوٹیاں لگی ہیں. ہماری عمارتوں کے نقشے بنے, یہاں کے کہتے ہیں انجینئرنگ والے, کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلاں جگہ سے کتابیں پڑھی ہیں, فلاں جگہ میں نام نہیں زیادہ لیتا, اس میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے زیادہ, بس یہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ ڈیزائننگ میں دیکھنا پڑے. عظمہ رضی اللہ عنہ, ٹاؤن پلاننگ ہم پڑھ لے, عمر سے سیکھو ٹاؤن پلاننگ, خط لکھا انہوں نے, ساتھ میں نے بھی وکاس رضی اللہ عنہ, خط لکھا, یہاں سے عراق, कहने लगे जी हम दजला के किनारे एक शहर बनाना चाहते हैं, तो उसके हमें बताइए कि हम क्या करें। उन्होंने खत का जवाब लिखा, अल फारूक किताब है तुम्हारे सीरत पर, उसमें ये खत लिखा हुआ है, उसका जवाब लिखा उन्होंने। मैं कहा देखो दरिया के किनारे शहर न बनाओ, दरिया के बिल्कुल किनारे पर शहर न बनाओ, क्योंकि दरिया में कभी तो व्यानी तालाब होता है और कभी उसमें खुशहाली होती है, इसलिए वहां से हट के 15-20 किलोमीटर हट के बनो और पानी की जरूरत के लिए वहां से नहर खोद के अंदर भेजो, फिर बीच में जामा मस्जिद बीच में बनाओ और उसकी ये उसकी क्या अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं ना, वो तो मैं क्या कहेंगे उसका पैमाइश उसकी ये हो। हम भी ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ पढ़ के ना हमें उर्दू के लफ्ज भूल गए। तो अब वो बीच में जामा मस्जिद बनाओ और फलां कबीले वालों का ये मिजाज है उनको इस तरफ रखो, उनके घर इस तरफ बनवाओ, इनके घर इस तरफ बनाओ, इनके जो बड़ी सड़कें होंगी उनकी चौड़ाई 60 फुट होगी, तकरीबन 80 फुट 90 फुट, जो छोटी सड़कें होंगी उनकी चौड़ाई 40 फुट के करीब होगी, 30 फुट होगी, जो सड़कें जो गलियां हैं उनकी चौड़ाई 10 फुट होगी, तो उसकी चौड़ाई, फिर उनके आगे घरों के दरवाजों का रुख कैसे होगा, फिर उसके बाद जो सरकारी इमारतें हैं वो जामा मस्जिद के करीब रखना, उसकी क्योंकि लोग आते हैं वहां जुमे के लिए, सारे इर्द-गिर्द के लोग भी आते हैं, उनकी जरूरियात वहां आसानी से पूरी हो जाएंगी। फिर जो सरकारी जो खजाना है उसको जामा मस्जिद पर मुस्तसिल साथ जोड़ के रखना, क्योंकि वहां आमदोरफ्त रहती है वो महफूज रहेगा। तो अब ये टाउन प्लानिंग उमर को किसने सिखाई, किसने उसकी रहनुमाई की, अल्लाह गैब से रूख देते हैं, अल्लाह गैब से रहनुमाई करते हैं, जब आदमी अल्लाह का बन जाता है। वो वहां फलस्तीन में तशरीफ ले गए एक जगह शाम में, तो वहां पता चला कि यहाँ वो फैला हुआ है, टाउन फैला हुआ है, अब क्या करें, बैठ गए मशरे के लिए बैठ गए, क्या करें, वबा फैली हुई है, तो अब जाएं आगे बढ़े ना जाएं, तो उनकी तरफ से पैगाम आ गया यहाँ वबा फैली हुई है और जान का भी खतरा है, लोग मर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ ना आए। अब ये कि भी हम वहां ना जाए, इस पर मशुरा चल रहा था, तो किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब्दुल रहमान के नौ पर दिनों आगे वो स्थिति के लिए वैसे तकलीफ से पहुंचे और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुन रखा है, ये क्वारंटाइन के जितने भी उसूल हैं सारे यहाँ से बता दिए कि अल्लाह के रसूल ने बताया था कि किसी जगह वबा फैल जाए तो बाहर से वो अंदर ना जाए, अंदर से वो बाहर ना आए। बस तुम्हारा नारा लगाया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस मामले में भी अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमा दी। तो अर्ज है कि कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं है जिसपे अल्लाह ने रहनुमाई नहीं हो, तो जिंदगी के जितने शोबे हैं उनके मुतालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, ये उलूम है, ये फनून है, इनको सीखना, लेकिन इनके मुतालिक जो अल्लाह के अहकाम हैं उनको सीखते हुए उनको करना, वरना ये ऐसे ही होगा, जिसम तो है लेकिन बगैर रूह। जितने भी अहकाम हैं अल्लाह के रसूल के तरीके हैं ये रूह की तरह से है और बाकी सारे जिस्म है। डॉक्टरी करेंगे, तजारत करेंगे, जिम्मेदारा सीखेंगे, जरा यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले देंगे, मेडिकल कॉलेजों से डिग्रियां ले देंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से और उनकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके मुतालिक अगर सवाल और अल्लाह के रसूल के तरीके अगर नहीं सीखे होंगे तो मेरे बुजुर्ग को ये ऐसे ही है जैसे जिसम बगैर रूह। तो जैसे वो जिसम बगैर रूह के पड़ा रहे 2-4 दिन, तो उसके बाद फिर वो परेशानी का जरिया बनता है, इसलिए आज सारे शोबे परेशानी का जरिया बन रहे हैं। अगर इसके मुतालिक जो दीन है उसको जिंदा कर लें तो ये सारे एक दूसरे के मामल बनेंगे, सारे एक दूसरे के लिए नफे का जरिया बनेंगे। हर एक तजारत के बारे में कहा कि अंबी और सिद्दीकीन के साथ इसका मिश्र होगा, तजारत यहाँ तक पहुंचती है। और इसी तरह हर शोबे का हाल है, बीमार तो बीमार हो गया, उसके पास कोई माल जाके खड़ा हो गया, अल्लाह की रहमत बारिश की तरह उस पर बरसने लग जाती है, और अगर उसके पास बैठ जाए तो ऐसे जैसे अल्लाह की रहमत के समंदर में डूब गया। जो किसी मुसलमान की किसी एक हाजत को पूरा करने के लिए चलता फिरता है, अल्लाह पाक उसको उसकी 70 हाजतें पूरी करेंगे, 70 हाजतें पूरी करेंगे अल्लाह पाक। तो बहुत सारे इसकी, लेकिन उसके मुतालिक अहकामात को सीखना, उसके मुतालिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों को सीखना। अच्छा, ये कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए है कुरान और हदीस का इल्म, इसके लिए है उलमा कराम, इसके लिए है मदारिस का निजाम। ये बताओ मैं तिजारत में कैसे चलूं, कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मेरी हमेशा की जिंदगी बच जाए, मैं जिम्मेदारी में कैसे चलूं ताकि मुझे अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए, मैं घर में कैसे चलूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरी दोनों जहानों की जिंदगी बच जाए। इसके लिए कुरान और हदीस का इल्म है, इसके लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी, इसके लिए सहाबा की जिंदगी, और उसको जानने वाले हैं उलमा कराम, उसको जानने वाले हैं बाजार। अब आवाज लगती है जी कि मदरसों में ये भी शुरू करो, ये भी शुरू करो, ये भी शुरू करो, ये ऐसे ही है जैसे एक मेडिकल कॉलेज में एक साहब आते हैं दौरे पर आए, बड़े उससे बड़े अफसर हैं, ये बड़े आगे देखा उन्होंने, और उससे पहले जरिए यूनिवर्सिटी में गए थे, उससे पहले वो कंप्यूटर कॉलेज में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गए थे। तो अब वो यहाँ आए तो देखा, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने आकर पूछा कि कोई राय कोई तजवीज़ हो आपकी, ये तो उनसे क्यों कहें कि जी ये बहुत अच्छा अल्लाह आपको जरा कहते बड़ा अच्छा आप संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज में जितना भी आप सिखा रहे, मेरी एक राय है कि मैं इससे पहले पिछले हफ्ते जरिए यूनिवर्सिटी में गया था तो वहाँ वो गंदम उगाने के तरीके बताते थे, हाइब्रिड बीज जो है उसको कैसे उगाना है, इसके तरीके पोल्ट्री को कैसे संभालना है सिखाते थे। तो ये तो गंदम है, ये तो जरूरत की चीज है, दवाई तो तब जरूरत होगी जब आदमी बीमार पड़ेगा, और गंदम तो हर वक्त की जरूरत है, चावल हर वक्त की जरूरत है, तो यहाँ इनको वो गंदम उगाने के तरीके भी आप सिखाएं, और यहाँ इनको चावल उगाने के तरीके भी सिखाएं। और उससे पिछले महीने मैं वहां गया था, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिखाते थे, उनको गाड़ियां बनाने के तरीके सिखाते थे, तो ये मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में वो गाड़ी कैसे बनानी है, सुजुकी कैसे बनानी है, उसके तरीके भी इनको सिखाए। क्या कहेंगे आप लोग जी, बताओ क्या कहोगे जी, क्या कहने जी, क्या कहा बताओ जी, कह रहे कि हम तो कहेंगे वो पागल है जी, मैं नहीं कह रहा ये कह रहे हैं। अब अगली बात गौर से सुनना, क्या कहते हैं, देखो एक है मेडिकल कॉलेज की जितनी जरूरत है उतना कंप्यूटर इनको सिखाना, जो इनकी जरूरत के लिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे जोड़ना कैसे तोड़ना ये उनकी जरूरत नहीं है, जो उनके फन में जो जरूरी है वो तो उनको सीखना उनके लिए मुमकिन है। इसी तरह से इन मदारिस को और ये जो जितने भी दीनी उलूम है इनका मकसूद क्या है, कि जिंदगी के हर शोबे में हर मुसलमान की रहनुमाई की जाए ताकि वो उस तरह से शोबे में चले उसकी आखिरत का नुकसान न हो, हमेशा की जिंदगी में कामयाब हो जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए, राजी होकर दुनिया में अमन चैन सुकून दे और आखिर की जिंदगी उसकी बना दे, उस रहनुमाई को सीखना। अगर हम ये कहेंगे कि जी इन मदारिस को प्रोडक्टिव मेहनत पे लगाओ, ये तो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई पैदावार तो होती नहीं इनसे, इनको काम थोड़ी करें, इनको किसी काम में लगाओ, ये बेकार है। देखो डॉक्टर साहब को अगर वहाँ गंदम के उगाने के तरीके सिखाने लगेंगे तो नुकसान क्या होगा, कि ऐसे लोग तैयार होंगे जो ना कि फन वाले होंगे ना कि दिल वाले होंगे, उसकी वजह से लोगों की सेहत की जरूरत भी पूरी नहीं होगी, उनको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वो नुकसान ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे ना, नहीं होगा। इसी तरह जिले यूनिवर्सिटी वालों को अगर डॉक्टरी के तरीके सिखाने शुरू कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कहत आ जाएगा, कुछ लोग मर जाएंगे, यही होगा ना कि पैदावार ठीक नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर अगर और चीजों को हमने शामिल कर दिया, इनको कहा कि ये इसको भी ये भी सिखाओ ये भी सिखाओ, तो उसका क्या होगा कि इनके फनून इनके उलूम जो है वो कमजोर हो जाएंगे, नाकिस हो जाएंगे, और उसके नतीजे में हमारी बाकी इंसानियत की आखिरत दी जाएगी दुनिया में और हमेशा की जिंदगी इनकी। इसलिए इनकी अपनी जरूरत है, इनकी अपनी जरूरत है, हर इदारे की अपनी जरूरत है, और वो तो अल्लाह के शुक्र हमारी आखिरत की फिक्र करते हैं, और अल्लाह इनको जरा ख्याल अदा फरमाए, एक एक दिन का हमसे नहीं देते, आप जाके मतलब पूछो डॉक्टर साहब से जाके पूछो ना कहीं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है जी, पहले 1000 रुपए जमा कराए मेरी फीस, उसके बाद आप आइएगा, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो उसे बिल्डिंग का नक्शा बनवाना है कि जी पहले जो है वो 20,000 मेरी फीस है, उसके बाद मैं उसका उसके नक्शे पे काम शुरू करूंगा, पहले वो जमा कराइए, और इनके पास क्या है आप मसला लिख के भेजें, मसला लिख के भेजें, और उसके बाद अपने पास से खर्च करके आपको खर्च का जवाब देंगे। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह गनी है देते नहीं है किसी से, अल्लाह के रसूल भी गनी है किसी से नहीं मांगते, किसी से देखे जब देने देने का जमाना उस वक्त तक साथ रहे, और जब फुतुहात हुई माल आना शुरू हुए तो दुनिया ही छोड़ के चले गए कि हमें जो है यहाँ से कुछ नहीं लेना। हरे नबियों का नारा होता है इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बिल आलमीन के पास है, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, हम तो तुम्हारे खैरखा हैं, ये नबियों के बारे हैं, इसलिए हमसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं लेते। और अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो फखर से और शौक से इसके पास जाना, यही बताइए, हमें बताइए कि इस मौके पर अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं, इस मौके पर क्या चाहते हैं। हर मौके पर उनसे पूछे, पूछ पूछ के चले। और रहमान पर अल्ली की कबीरा, रहमान के बताए हुए जाबते, उसके बताए हुए दीन को जानने वालों से पूछो, हर एक से नहीं पूछना, जानने वालों से पूछो। और ये जो सीखने के लिए चलेंगे, अल्लाह पर सीखने के लिए चलेंगे ना जी, तो फरिश्ते इनके लिए दुआएं करेंगे, इनके लिए पर बिछा देंगे, मछलियां इनके लिए दुआएं करेंगी, चूटियां इनके लिए दुआएं करेंगी, परिंदे इनके लिए दुआएं करेंगे। और अगर किसी रास्ते में इनका इंतकाल हो जाता है, घर से लेके जहां इनका इंतकाल हुआ, इतने बड़े बेजोड़ मोती का महल अल्लाह इनको जन्नत में दे देंगे। ये सीखने के लिए चलना इतना कीमती है। तो अर्ज कर रहा था कि ये फनून कितने हैं, ये बेकार नहीं है, इनमें हिम्मत के साथ चलना है। देखो पढ़ाई में कमजोर नहीं रहना हमें, दरखास्त है आप हजरात से, पढ़ाई में भी आगे और दीन के काम में भी आगे, तबलीग के काम में भी आगे। मुसलमान ढीला नहीं होता, सुस्त नहीं होता, हुजूर की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल आज़्ज़ि वल कस, कि अल्लाह मैं आजिज होने से और सुस्ती काहली से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये काहली और सुस्ती जो है, ये ठीक नहीं है। पढ़ाई में पूरी हिम्मत से, पूरी तवज्जो से, पूरी यकीन। हमारे क्लास में 13-14 नौजवान थे जिनका चिल्ला तो पढ़ाई के दौरान लगा, फिर रोजा भी लगता रहता था, मेरा रोजाना भी कुछ वक्त देते थे, तलबा से कहते थे रोजाना असर से मगरब वक्त, असर से मगरब इसके लिए वक्त, अल्लाह ने काम दिया हमें इसको। और अगर असर से मगरब पढ़ाई का तकाजा हो तो फिर मगरब के बाद वक्त। ये तो उनसे क्यों कहें कि ये बहुत अच्छा, अल्लाह आपको जरा कहते बड़ा अच्छा, आप सुधार रहे हैं, लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज में जितना भी आप सिखा रहे, मेरी एक राय है कि मैं इससे पहले पिछले हफ्ते जरिए यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ वो कसम उगाने के तरीके बताते थे, हाइब्रिड बीज जो है उसको कैसे उगाना है, इसके तरीके पोल्ट्री को कैसे इस्तेमाल है सिखाते थे। तो ये जो कसम है, ये तो जरूरत की चीज है, दवाई तो तब जरूरत होगी जब आदमी बीमार पड़ेगा, और कसम तो हर वक्त की जरूरत है, चावल हर वक्त की जरूरत है। तो यहाँ इनको वो कसम उगाने के तरीके भी आप सिखाएं, और यहाँ इनको चावल उगाने के तरीके भी सिखाएं। और उससे पिछले महीने मैं वहां गया था, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिखाते थे, उनको गाड़ियां बनाने के तरीके सिखाते थे। तो ये मेडिकल कॉलेज में सरदार में वो गाड़ी कैसे बनानी है, सुजुकी कैसे बनानी है, उसके तरीके भी इनको सिखाए। क्या कहेंगे आप लोग जी, बताओ क्या कहोगे जी, क्या कहने जी, क्या कहा बताओ जी। कह रहे कि हम तो कहेंगे वो पागल जी, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। अब अगली बात गौर से सुनना, क्या कहते हैं, देखो एक है मेडिकल कॉलेज की जितनी जरूरत है उतना कंप्यूटर इनको सिखाना, जो उनकी जरूरत के लिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे जोड़ना कैसे तोड़ना, ये उनकी जरूरत नहीं है। जो उनके फन में जो जरूरी है वो तो उनको सीखना उनके लिए मुमकिन है। इसी तरह से इन मदारिस को और ये जो जितने भी दीनी उलूम है, इनका मकसूद क्या है, कि जिंदगी के हर शोबे में हर मुसलमान की रहनुमाई की जाए, ताकि वो उस तरह से शोबे में चले उसकी आखिरत का नुकसान न हो, हमेशा की जिंदगी में कामयाब हो जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए, राजी होकर दुनिया में अमन चैन सुकून दे और आखिर की जिंदगी उसकी बना दे, उस रहनुमाई को सीखना। अगर हम ये कहेंगे कि जी इन मदारिस को प्रोडक्टिव मेहनत पे लगाओ, ये तो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई पैदावार तो होती नहीं इनसे, ये इनको काम थोड़ी करे, इनको किसी काम में लगाओ, ये बेकार है। देखो डॉक्टर साहब को अगर वहाँ गंदम के उगाने के तरीके सिखाने लगेंगे तो नुकसान क्या होगा, कि ऐसे लोग तैयार होंगे जो नाकिस फन वाले होंगे, नाकिस दिल वाले होंगे, उसकी वजह से लोगों की सेहत की जरूरत भी पूरी नहीं होगी, उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वो नुकसान ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे ना, नहीं होगा। इसी तरह जरिए यूनिवर्सिटी वालों को अगर डॉक्टरी के तरीके सिखाने शुरू कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कहर आ जाएगा, कुछ लोग मर जाएंगे उससे, नहीं होगा ना कि पैदावार ठीक नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर अगर और चीजों को हमने शामिल कर दिया, इनको कहा कि ये, इसको भी ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, तो उसका क्या होगा कि इनके फनून, इनके उलूम जो है वो कमजोर हो जाएंगे, नाकिस हो जाएंगे, और उसके नतीजे में हमारी बाकी इंसानियत की आखिरत भी जाएगी दुनिया भी, और हमेशा की जिंदगी इनकी। इसलिए इनकी अपनी जरूरत है, इनकी अपनी जरूरत है, हर इदारे की अपनी जरूरत है। اور وہ تو اللہ کے شکر ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دن کا ہم سے نہیں دیتے. آپ جا کے مسئلہ پوچھو ڈاکٹر سے, جا کے پوچھو نا کہ جی ڈاکٹر میرے پیٹ میں رہے, پہلے 1000 روپیہ جمع کرائے میری فیس, اس کے بعد آپ آئیے گا. آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے, مجھے بلڈنگ کا نقشہ بنوانا ہے کہ جی پہلے جو ہے وہ 20000 میری فیس ہے, اس کے بعد میں اس کے نقشے پہ کام شروع کروں گا, پہلے وہ جمع کرائیے. اور ان کے پاس کیا ہے, آپ مسئلہ لکھ کے بھیجیں اور اس کے بعد اپنے پاس سے خرچ کر کے آپ کو خط کا جواب دیں گے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا کام. اللہ غنی ہے, لیتے نہیں ہیں کسی سے. اللہ کے رسول بھی غنی ہے, کسی سے نہیں مانگتے. کسی دن دیکھے جب دینے کا زمانہ اس وقت پر ساتھ رہے, اور جب فتوحات ہوئی مال آنا شروع ہوئے تو دنیا ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ ہمیں جو ہے یہاں سے کچھ نہیں لینا. ہر نبیوں کا نعرہ ہوتا ہے ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے, مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. انی لکم ناصحون امین, ہم تو تمہارے کہہ رہا ہے, یہ نبیوں کے وارث ہیں, اس لیے ہم سے کچھ نہیں مانگتے, کچھ نہیں لیتے. اور اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو فخر سے اور شوق سے اس کے پاس جانا کہ جی بتائیے, ہمیں بتائیے کہ اس موقع پر اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, اس موقع پر کیا چاہتے ہیں. ہر موقع پر ان سے پوچھیں, پوچھ پوچھ کے چلے. الرحمن فسأل بھی خبیرا, رحمان کے بتائے ہوئے ضابطے, اس کے بتائے ہوئے دین کو جاننے والوں سے پوچھو, ہر ایک سے نہیں پوچھنا, جاننے والوں سے پوچھو. اور یہ جو سیکھنے کے لیے چلیں گے, اللہ اکبر, سیکھنے کے لیے جو چلیں گے نا جی, تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں گے, ان کے لیے پر بچھا دیں گے, مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کریں گی, چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کریں گی, پرندے ان کے لیے دعائیں کریں گی. اور اگر کہیں راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, گھر سے لے کے جہاں ان کا انتقال ہوا, اتنے بڑے بے جوڑ موتی کا محل اللہ ان کو جنت میں دے دیں گے. یہ سیکھنے کے لیے چلنا اتنا قیمتی ہے. تو اللہ کا رکھ ہے کہ یہ فنون جتنے ہیں یہ بیکار نہیں ہے, ان میں جب ہمت کے ساتھ چلنا ہے. دیکھو پڑھائی میں کمزور نہیں رہنا ہمیں, درخواست ہے آپ حضرات سے, پڑھائی میں بھی آگے اور دین کے کام میں بھی آگے, تبلیغ کے کام میں بھی آگے. مسلمان ڈھیلا نہیں ہوتا, سست نہیں ہوتا. حضور کی دعاؤں میں ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکم, کہ اللہ میں عاجز ہونے سے اور سستی کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ کاہلی اور سستی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پڑھائی میں پوری ہمت سے, پوری توجہ سے, پوری یقین. ہمارے کلاس میں 13-14 نوجوان تھے, جس کا قصہ جب پڑھائی کے دوران لگا, روزہ بھی لگتا رہتا تھا, روزانہ بھی کچھ وقت دیتے تھے طلبا سے, کہتے تھے روزانہ اثر سے مغرب وقت, اثر سے مغرب اس کے لیے وقت, اللہ نے کام دیا ہمیں اس کو. اور اگر اثر سے مغرب پڑھائی کا تقاضا ہو تو پھر مغرب کے بعد وقت دے دو, یا عشاء کے بعد اتنا ہی وقت دے دو, گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنا مطلب, طلبا سے اسے زیادہ نہیں دے, طلبا سے گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کے لیے دیں روزانہ. ایک دفعہ بھائی صاحب نے مجھے بلایا, دعا کریں اللہ کو سے تندرست کیا تھا, وہ بلایا سارا سے کسی بات پر, کہنے لگے کہ یہ خط تم میں سے کون طلبا کو کہتا ہے کہ تم 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے دو, کیونکہ ہم سنتے ہو طلبا کے حلقے میں. میرے سامنے ناراضگی کا اظہار کیا, تو طلبا کے لیے اثر سے مطلب کا وقت روزانہ, وہ پڑھائی میں کمی نہ آئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے 13-14 لڑکے ماشاء اللہ سب کا اللہ رکھے, تو ہمارے آخری سال میں بڑے پروفیسر تھے آئی کے, وہ عموماً جو بھی سوال پوچھتے تو ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی جواب دیتا. تو ایک دن کہنے لگے, انہوں نے جتنے بھی سوال پوچھے سب انہیں میں سے کتنے کھڑے ہو کے جواب دیا, اور کسی نے جواب نہیں دیا. وہ کہنے لگے کہ بھائی اونلی دا مولویز ریپلائی, کیا بات ہے, صرف مولوی جواب دیتے اور کوئی نہیں جواب دیتا. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو تو دو کام ہے, یا انہیں دین کا کام کرنا ہے, یا انہیں اپنی اسکول کالج کی پڑھائی کرنا ہے, انہیں دو کام ہیں. اور تمہیں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں, کام کے نام نہیں لیتا یہاں پر. انہوں نے گنوائے وہاں پر کر گلاس, آپ تو سمجھدار اشارہ سمجھ گئے نا, بہت سارے کاموں سے بچنا ہے, بہت سارے کاموں سے بچنا ہے, کسی کام نہیں لے گا. ہر سال سے جلوس نکالنا, جلسے نکالنا کرنا, یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں. ہم اپنے بڑوں کے خلاف, استادوں کے خلاف ہڑتال نکال. اور عقل مند ہو خود ہی بتاؤ, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, عقل کم ہوتی ہے, تجربہ ہوتا نہیں ہے. अगर इन नौजवानों को अपने बड़ों की सरपरस्ती से निकाल दिया जाएगा ना जी, तो फिर इनसे जो चाहे काम करा दो। इसलिए कहते हैं कि हर मस्जिद में नौजवान अपने बड़ों के साथ जुड़ते हैं। इसलिए तलबा की कोई अलग जमात नहीं, मस्जिद की जमात, मस्जिद की जमात। तलबा का कोई अलग तबका नहीं, उनकी कोई अलग यूनियन नहीं। हमारे अपने बड़ों के साथ जुड़ के चले, उनसे पूछ पूछ के चले, उनके ताबे बन के चले। बड़ों का तजर्बा होता है, उनकी समझ होती है, उनकी बसीरत, उनकी दूर तक निगाह होती है। नौजवानों में कुव्वत अमल होती है, इज्जत हाथ जोड़ होती है। दोनों जब मिल के चलेंगे तो एक दूसरे की कुव्वत का जरिया बनेंगे। और नौजवान अगर बड़ों से कट जाएंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी कुव्वत अमल को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी बसों को आग लगाएंगे, अपनी जो है बिल्डिंगों को तोड़, उनकी तोड़फोड़ करेंगे और अपनी अपनी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने उस्तादों की बेइज्जती करेंगे। ये हमारा रास्ता नहीं, रास्ता नहीं। हाँ, तरीके से कोई मसला है, कोई दुश्वारी है, कोई दिक्कत, अपने बड़ों के पास आते हो जाए, ये मसला है। और हमारे यहाँ मुतालबात नहीं है, मुतालबे नहीं है हमारे। हमारे यहाँ हकूक की अदायगी है, फराइज है। इसलिए दीन में ये नहीं पूछ, कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हारा अदा किया कि नहीं। ये पूछा जाएगा कि बताओ तुमने उस्तादों के साथ क्या मामला किया, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, ये नहीं पूछा जाएगा हमसे। हाँ, मेरी माँ का मेरे ऊपर क्या हक है, मैंने उसको अदा किया कि नहीं, ये मुझे पूछा जाएगा। मेरे बाप का क्या हक है, तुमने उसको अदा किया कि नहीं, ये पूछा जाएगा। मेरे पड़ोसी का क्या हक है, तुमने उसको अदा किया है कि नहीं, ये पूछा जाएगा। तू दफ्तर में 8 बजे वक्त लगता था, तू 10 बजे जो है घर से निकलता था, ये 2 घंटे बता तूने उसका हक क्यों नहीं अदा किया, ये मुझे पूछा जाएगा। तो हमारे मुतल्लिक जो हुकूक हैं, हमारे मुतल्लिक जो जिम्मेदारियां, हम उसको देखें, वो दूसरों की जिम्मेदारियां। तो हुकूक का मुतालबा हमारे यहां नहीं, ना मखलूक से है, ना अल्लाह से है। और अल्लाह के सामने हक हमारा है क्या, हम क्या है, हमारी क्या हैसियत, इतनी नेमतें बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रही हैं। उससे मांगने का तरीका मैंने बता दिया, तो मुझे मांगो, दुआ मांगो, अपना हक समझ के नहीं, उसका एहसान समझ के, वो हमारे ऊपर कर्म फरमा दे। वरना हक तो एक जगह लिखा है, एक खिलाफ है इस्तेहकार। हक तो हमारा ये था कि हमारी पिटाई होती, हमें जो है वो सजा दी जाती, जो हमारे अमाल है, जो हमारी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह को तो हमें माफ कर दे, और वो अपना फर्ज, तो अपना जो है कर्म फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, और तो हमें ये दे दे। अल्लाह से मांगना है, किसी से नहीं मांगना। कोई मसला आ गया, अपने बड़ों के पास अदब से हाजिर, अपने उस्तादों के पास हाजिर होते अपने। और हमारे तो हजरात जो है तो फरमाते कि देखो, जरूर के नहीं जाना है, अपने उस्तादों से पूछ ले जाओ, बगैर इजाजत के ना जाओ, उसे इजाजत देंगे जाओ। अब आशा जी कहते हैं वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तो पूछने का रवाज ही नहीं। अब तो ये हमारे हजरात में क्योंकि ये सारा सब्जी का काम है ही गए रवाज, यानी ब्रश का रवाज था, सरोदे का रवाज था, जिले जिले का रवाज था, सारे काम गए रवाज ही। तो उसमें तलबा अपने उस्तादों से उसे इजाजत लेके जा। अगर कोई लेक्चर हो, वो कहते हैं कि भाई देखो आज का लेक्चर अहम है, तो हम जमात के साथ चले जाएं, उस लेक्चर के लिए वापस आ जाए, फिर दोबारा जमात के पास चले जाए। उस्तादों को नाराज नहीं करना, उनके लिए दुआ मांगे, उनके लिए दुआ मांगे, अल्लाह तौफीक दे। कभी कभार उनके लिए कोई फल, कोई चीज, को खुशबू, को तस्वीर, को हदिया भी दे दी, लेकिन नियत ठीक रखते हुए, गड़बड़ ना करना चाहिए। अल्लाह राजी होंगे। तो अपने उस्तादों का, उनका अदब, उनका एहतराम, किसी तरह बड़े हैं, छोटे हैं, उनके साथ हमें कैसे चलना है, उसका पूछना पड़ेगा। ये अपने बड़ों का, उनका ये जो नौजवान बड़ी कीमती, देखो ये जिंदगी बड़ी जवानी बड़ी कीमती है। कयामत के दिन 5 सवाल होंगे, जिंदगी कहाँ गुजारी और जवानी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, ये खास तौर से पूछा जाएगा। और माल कहाँ, कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, और 5वां साल है जो इस फल पे कितना, ये 5 साल। अल्लाह ने कुरान में नौजवानों का खास तौर से जिक्र किया, खास तौर से जिक्र किया, और उनको और तस्करा कहाँ किया है, जहाँ तबलीग का काम है, जहाँ दीन इतने जगह खास तौर से करके रखे हैं। तीन जगह तो मेरी नजर से भी गुजरा, बाकी और वहां बेहतर जानते हैं और भी कहीं होगा। एक जगह वो जो असाबे साहब है ना, उनका तस्करा किया था ने कि देखो ये नौजवान है जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए इनको मुल्क छोड़ना पड़ा, वो छोड़ के चले गए। इनको वतन छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, बच्चों की, बहन भाइयों की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, अपने सब कुर्बान करके अपना वतन छोड़ के चले गए। अल्लाह ने उनका तस्करा, ये नौजवान थे जो ईमान बचाने के लिए अपने दीन को, वहां का बादशाह वो जालिम था और वो जो भी कलमा पढ़ने वाला उसको कतल करा देता था। तो इन्होंने जब ईमान सीखा, इन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए हिजरत कर गए वहां से। तो कहते हैं हमारे मौलाना खलील सुनाया कि सिर्फ मुल्तान वाले बड़े बुजुर्ग थे, हम पढ़ाई के जमाने में उनके पास चले जाते थे, कभी दुआ करते थे। एक वक्त था, एक जमाना था, तलबा को इतना करते थे नौजवानों को, कहते एक जमाना था कि ये दीन गरीब था, यानी घरों से मुसाफिर हो चुके थे, इसका तर्जमा मुसाफिर का करते थे, इसको कोई जानता नहीं था, कभी जैसे मुसाफिर को कोई नहीं जानता होता, इस तरह ये घरों से मुसाफिर हो चुका था, घरों से, बाजारों से, शहरों से ये रुखसत हो चुका था, कोई नहीं दीन को जानता था, कोई नहीं इस्लाम को जानता था, कोई नहीं अल्लाह के अहकाम को जानता था, बदल इस्लाम गरीबा कोई नहीं इसको जानता था। फिर एक मेहनत हुई और ये दीन जो है जिंदगियों में आया और लोगों ने इसको जानना शुरू किया, अल्लाह के अहकाम को सीखना शुरू किया, अल्लाह के रसूल के तरीकों को सीखना शुरू किया, इनके अकायद ठीक हुए, इनकी इबादत कायम हुई, इनके मामला दुरुस्त हुए, इनके अखलाक अच्छे हुए, इनके अंदर मुआशरत आई, इनके अंदर इखलास आया, इनके अंदर सखावत का जज्बा पैदा हुआ, इनके अंदर तवाज़ो आई, इनके अंदर अल्लाह के दीन के लिए जान माल लगाने का फिक्र पैदा हुआ, ये सारी खूबियाँ इनके अंदर आई, इन पे आपस में मोहब्बतें आई, इनमें आपस में जोड़ पैदा हुआ। और फिर एक जमाना फिर आएगा कि दोबारा ये दीन घरों से रुखसत हो जाएगा, दोबारा ये दीन अजनबी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा। आपके सामने है कितने हैं जो कलमा भी नहीं जानते आज, जो दीन की पहली बुनियाद है, कितने जिनके देहातों में चले जाओ, आपका जाना हुआ होगा बातों का जाके, कितने हैं जो कलमा भी नहीं जानते, कितने हैं जो नमाज भी भूल के हमारे इसी कराची में, हमारे इन्हीं शहरों में, कितने जो रोजे को भूल गए, जो हज को भूल गए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं पहचानते। तो एक जमाना फिर आएगा कि ये दीन फिर घरों से, बाजारों से, खेतों से, अदालतों से, अस्पतालों से ये मुसाफिर हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा। और मुबारक है वो साथ, वो लोग घरों से ही मुसाफिर हो जाएगा। मुबारक है तू वाली गुरबा, मुबारक है बड़ा इस तरह निकाल देते थे, मुबारक है वो लोग जो इनके साथ खुद भी मुसाफिर हो जाए। ये दीन अल्लाह का घरों में आएगा, जिंदगियों में आएगा, या फिर हमारी जाने किसी जगह चलते चलते जिंदगी की शाम हो जाएगी, जिंदगी का सूरज डूबेगा, किसी की अमरीका में मौत आएगी, किसी की चीन में जो है कब्र बनेगी, किसी की रूस में कब्र बनेगी, कोई जो है कोई अफ्रीका से लंबे कहते हुए उठेगा, बर्दाश्त हो सकता है کہ انسانیت جو ہے بغیر دین کے مر جائے، بغیر ایمان کے مر جائے، بغیر اسلام کے دنیا سے چلے، یہ نہیں برداشت ہو. میرے لوگ یہاں رہنے کے اس پر اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ تو ہے اپنے ایمان کو بچانے والے. دوسرا جو ایمان کی محنت کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دینے والے، ان کا تذکرہ کیا نوجوان کہتے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو اللہ نے ان کو کہا کہ حضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جائیں، میں پورے واقعے میں نہیں جاتا. تو ان کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام یہ نوجوان تھے جو ان کے ساتھ چلے، تو بعد میں نبی بنے حضرت یوشع علیہ السلام. تو یہ ان کی نصرت کے لیے، ان کی معاونت کے لیے ان کے ساتھ تھے. تو یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے نوجوان کہتے اس کو یوشع علیہ السلام، کہ وہ نوجوان جو ہے تو نبی کا ساتھ دینے والے نوجوان ہوتے ہیں شروع میں. اس لیے وہ جو ہرکل نے پوچھا نا حضرت ابو سفیان سے، ابو سفیان سے ان کے ساتھ جو لوگ تھے قریش کے، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا ساتھ دینے والے نوجوان زیادہ ہیں یا بڑی عمر کے لوگ زیادہ ہیں؟ اچھا جی، وہ تو نوجوان ایسے سرفرے سے نوجوان زیادہ ہیں، باقی بڑی عمر کے جو پختہ سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو ابھی زیادہ نہیں، اس کا دکان ہے ابو بکر جیسے اور جیسے. تو اس نے کہا، ہرکل نے کہا کہ ہاں ہاں دیکھو، بعد میں اور بھی سوال پوچھ اس نے کہا کہ یہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا ساتھ دینے والے نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان ساتھ دیتے ہیں، پھر نبی کا ساتھ دینے والا نوجوان. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. پھر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بتوں کو توڑا ہے اور وہاں انہوں نے جو دعوت دی ہے، وہاں اللہ نے نوجوان کیا کس طرح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ دیکھو یہ نبی جو ہے یہ نبوت کام کرنے والا یہ نوجوان ہے. تو جوانوں کو خاص نسبت ہے نبوت کے کام کے ساتھ، خاص نسبت ہے نبوت کے کام کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ نوجوان جو اللہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، یعنی نوجوانی میں اللہ کی ماننی شروع کی، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنا شروع کیا اور چلتے 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 بوڑھا ہو گیا. وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے ساتھ، 70 صدیقین کی صدیقین کے برابر اجر دیں گے. اور صدیق جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے. تو 70 صدیقین کا اجر اس نوجوان کو اللہ دیں گے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں چلانا شروع کرے اور چلتے 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 بوڑھا ہو جائے. 70 صدیقین کے برابر اللہ اس کو اجر دیں گے. اور آپ ماشاء اللہ سارے نوجوان ہو، بس یہ طے کرو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے ہیں. اور ساری دنیا میں دیکھو میرے بزرگ کو، ہمیں بڑا حوصلہ بڑے عزم کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ نے ایک زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو لے کے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جائیں کہ دیکھو اگر امن چاہتے ہو، اگر حفاظت چاہتے ہو، اگر گھروں بڑی پیاری زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے. میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا جی، ہماری خدمات انگلینڈ سے پولینڈ آ رہی تھی تو راستے میں جہاز میں ایک گڑیا غیر مسلم تھی وہاں کی انگلینڈ کی، اس نے دیکھا کہ یہ خاص لباس ہے، خاص ان کی شکل ہے. اس نے ایک ہمارے ساتھی سے سوال پوچھا، کہنے لگی کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پھر کیا بتایا تھوڑا سا کہ ایسے مسلمانوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ ہماری بیویاں کہاں ہیں؟ وہ نہیں تمہارے ساتھ، وہ گھروں میں ہیں. کیا بچے کہاں؟ بچے بھی گھروں میں، اپنی ماؤں کے پاس رہتے ہیں. اس نے اس پہ کہا کہ وہ تو بچے جو ہیں عورتیں جو ہماری جو بیویاں ہیں وہ تو جاب پہ چلی جاتی ہوں گی، تو بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہماری بیویاں تو جاب نہیں کرتی، ہماری عورتیں تو جاب نہیں کرتی. کہا کہ اچھا، جاب نہیں کرتی تو کھاتی کہاں سے ہے؟ جاب نہیں کرتی تو کھاتی کہاں سے ہے؟ इन्होंने कहा कि सुनिए, अल्लाह की कर्म कमाते हैं, खुद भी खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, वो घर के बुजुर्गों को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनकी और उनको मेहमान वगैरह आ जाता है उसको संभालती हैं, और घर में खाना पकाना हो गया उसको करती है। उसने आगे जुमला कहा कि दैट्स देयर क्वीन। फिर दो मलक आए और फिर अपना किस्सा सुनाया कि देखो मैं 65 साल की हुई, मेरा खामन भी है, मेरा बेटा भी है, और मुझे पता है कि मैं एक दिन अगर जॉब पे नहीं जाऊंगी तो मुझे को खाना नहीं पूछेगा, मुझे को खाना नहीं पूछेगा। तो अल्लाह ने हमें, अल्लाह इसकी हमें समझ दे दी। अरे एक इदारा है, उससे मरे सखी ने पूछा उससे कि भी आपके इदारे में औरतें नहीं काम करती, को एजुकेशन होनी चाहिए हर जगह, औरतों को भी जॉब दो, इनको भी जज बनाओ, इनको भी ये करो। देखो बात तो जरूर की चीजें हैं, वो तो करनी पड़े, वो तो करते थे। लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है, तो मेरी बहन बीमार होगी, मेरी माँ बीमार होगी, बेटी बीमार होगी, उसका निजाम बनाना पड़ेगा, वो सारे मुआवजे की जरूरत है, उसके उसूल है, उसके अहकाम क्या तरीका हो उसका। बात जरूर की चीजें हैं, ये मौलवा से पूछने की बात है। बाकी ये कि औरत मर्द बराबर है, ये पागल बने की बात है, ना समझे की बात है। एक औरत बेचारी हामला है और आप कह रहे जाके वो ट्रक भी चलाए और बच्चे को दूध पिला के आती है और साथ कहते सेल्स गर्ल का काम भी करे वहां पर, फितरत ने उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली, अल्लाह ने उसकी ये जिम्मेदारी नहीं डाली। गुजस्ता आज देखो 25 साल पहले दुनिया की बड़ी ताकत शुमार होती थी, उसका सरबरा उसकी मैंने तकरीर पढ़ी, जो उसकी देखने की बात थी, लेकिन बात उससे बड़ी चीज थी। उसने कहा कि हमारे निजाम ने, हमारा निजाम क्यों फेल हुआ, उसके कई अजवाब हो सकते हैं। उसने एक सबब यह बताया कि हमने क्या किया कि हमने कहा कि सब बराबर है। इस्लाम में मसावात का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर है, कदा बड़ा सब बराबर है, बाप और बेटा बराबर हो सकते हैं बताओ, क्यों जी, माँ और बेटी बराबर हो सकते हैं, हमारे यहाँ बराबरी का ये मतलब नहीं है। हमारे यहाँ मसावात का, बराबरी का मतलब यह है कि हर एक को उसके दर्जे पे रखो, जिसका जो मुकाम है, जिसको वो दर्जा उसको वो दो, माँ का जो दर्जा वो दो, बेटी का जो दर्जा वो दो, बीवी का जो मुकाम है उसको वो दो, हर एक को उसके मुकाम पे रखो। तो अब वो लगा कि हमारे इस निजाम ने मसावात का नारा लगाया और ये कहा और कहा कि लड़कियों को, औरतों को, इनको भी जॉब करनी चाहिए, इनको भी सेल्स गर्ल बनाओ, इनको भी जो है सेक्रेटरी बनाओ, इनको भी गाड़ियां चलाए, इलीगली वो हवाई जहाज की पायलट बने और ये भी फौज के जो है सरबरा बने, इनको भी जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ना आपके कराची एयरपोर्ट से, वो टोकन लेने के लिए बिठाया होगा वहां पर, पता नहीं गैरत कहाँ चली गई, ईमान कहाँ चलाएगी, और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वहां बीच पे खड़ा किया होगा, ताकि सख्त गर्मी में शहर में हम गए हैं, शहर में होंगे वो बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बिठाया हुआ। चलिए आज मैं एक शहर से गुजर रहा था, डॉक्टर नाराज होगी तो बस हो गया ज्यादा, तो बस पास एक शहर से गुजर रहा था तो वहां एक बोर्ड लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि डे केयर सेंटर। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मतलब डे केयर सेंटर, आपके यहाँ तो कई बन नजर आते हैं, जी यहाँ वो जब तक औरत भी जॉब कर रही होती है, मर्द भी जॉब करते हैं, दोनों जॉब पे जाते हैं, पीछे बच्चा जो है वो किसके पास ठहरे, तो इसलिए यहाँ ऐसी औरतें होती है जो बच्चे को दूध पिलाती है, पेशाब पखाना उसे साफ कर देती, रात को आते उसको घर ले आती, तभी जो है दो चार दिन के लिए किसी शहर में जाना पड़ता है तो मियाँ भी वहां चलेंगे कि बच्चे को संभालती। तो मैंने छोटे ही कहा कि ये तुम्हारे नए कितने यतीम खाने हैं, जिस किस्म के यतीम खाने हैं, कि माँ बाप जिंदा है लेकिन बच्चा यतीमों की तरह बनता है, और फिर उसका नतीजा क्या होगा, आगे चल के ये कहेंगे कि जो ओल्ड एज होम है आप वहां जाके रहिए, जब आपको जरूरत होगी उसकी अब आप वहां जाके रहिए। तो अब वो उसने कहा कि मैंने मेरे पिताजी ने पूछा उससे कि जो आपके इदारे में औरतों को जॉब क्यों नहीं देते, उसने ऐसी बात कहने के हमने इसको पूरा कर दिया कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मुसलमानों का मुआशरा है और मुसलमान मुआशरे में औरत पर भी ज्यादा की आमतौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, इल्ला ये कि बहुत कोई 100 में से 1000 में से कोई एक आदेश, या तो वो बेटी है या वो माँ है या बीवी है या बहन। अब बाप उसकी जरूरतों को देख लेगा, शादी होगी तो खामद देख लेगा, बाप नहीं है तो भाई देखते हैं उसको, या उसका बेटा है वो देखेगा, या जो भी वो कमाती है, अगर वो कमाती है तो वो अपने लिए होता है उसका। और हमारे यहाँ माशाअल्लाह का शुक्र ऐसा है कि जितने भी मर्द हैं बाप इसको आज समझता है कि मैं बेटी की कमाई खाऊं, और बीवी इसको वो खामद जो है इसको कि मैं बीवी की कमाई खाऊं, ये इसको ये कहती है। फिर उसने कहा कि हमने पूरा स्टडी पूरा सर्वे किया कि मर्दों की अगर जॉब जाती है, मर्दों की जॉब जाती है, डिप्रेसिव रवैया आता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, किसी काम के काबिल नहीं रहता, हद तक वो खुदकुशी तक कर लेता है। और एग्रेसिव बिहेवियर सामने आता है, वो लड़ाई मार कुटाई चोरियां डाके कत्ल यहाँ तक चला जाता है। तो इस सारे का हल ये है, अच्छा औरत की अगर जॉब जाती है तो उसको किराए वाले सब मौजूद हैं, वो घर बैठ जाती है। तो हमने पॉलिसी के तौर पर तय कर रखा है कि हमने यहाँ पर मर्दों को जॉब देनी है। थोड़ी अक्ल हम इस्तेमाल करें कि हम किस तरफ को चलें, अपनी समझ इस्तेमाल अल्लाह ने दी है, हमें समझ इस्तेमाल करने वाले अल्लाह ने जो जबते बताए वो बड़े। तो मेरे बुजुर्गों और हया के साथ अपनी नजरों की हिफाजत करते थे। लाहौर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आज तक इसमें पढ़ते रहे, नमिया कॉलेज रेलवे रोड, पुराना कॉलेज है, तकलीफ से पहले वहां एक बार फिर हड़ताल हो गई, वहां जुलूस निकला, जुलूस नहीं निकालना अपने हड़ताल, लेकिन वहां का वाक्य हड़ताल हुई किस बात पर, अब तो हैरान हो गए किस बात पर। हुकूमत ने यह फैसला किया कि यहाँ मखलूत तालीम होगी, को एजुकेशन होगी। तो हड़ताल इस बात पर हुई कि हम इतने बेगैरत नहीं हुए कि हमारी बहनें और बेटियां हमारे साथ आगे ना पड़ेंगी। इस पे फिर मजबूरन हुकूमत को लड़कियों का कॉलेज अलहदा बनाना पड़ा, जो हॉस्टल बनाया था वो पंजाब असेंबली के पीछे इस्लामिया कॉलेज को रोड हो गया अलहदा बना। भैया अल्लाह ने क्या इस्लाम की मुआशरत की दो चीजें खास है, दो चीजें एक हया दूसरे साली, इसके लिबास में हया, इसके खाने में हया, इसकी सर इसके उठने बैठने में हया, और शादी हर चीज में शादी। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने एक जिंदगी दी है जो आसमानों से उतरी, ये मामूली जिंदगी नहीं है, हम इसकी कदर हम जो उससे महरूम हुए कुछ अपनी नाकदरियों की वजह से महरूम हो गए, हम इस पे अल्लाह से तौबा करें, इस पे बात करें कि अल्लाह हम मुसलमान हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह तू हमें वापस उस जिंदगी दे दिया। और सहाबा किराम ने उस जिंदगी को अल्लाह के रसूल से सीखा और उसको फिर पूरी दुनिया में लेके फैले, उन्होंने इस काम को अपना काम बनाया, इसको अपना मकसद बनाया। बाकी सब पहले तफसील से बात होगी, किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं है, पढ़ाई में कमी नहीं कर, पढ़ाई में कमी नहीं कर, और अपने वालिदैन के साथ अदब के साथ और शफकत के साथ अपने उस्तादों के साथ अदब का मामला, उनकी मान मान के चलना, और इस काम को अपना काम बनाना, इसको अपना मकसद बनाना। हमारा मकसद क्या है, ऐलाए कलमतुल्लाह, पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमों को फैलाना, पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को फैलाना। अल्लाह ने हमें इसलिए दुनिया में भेजा है। रवि बिन आमिर रजी अल्लाह को रुस्तम के दरबार में गए, वो सिपहसालार था, पूरी जो पर्शियन एम्पायर थी ईरान का, उस वक्त दुनिया में दो बड़ी एम्पायर शुमार होती थी, पर्शियन एम्पायर और बेजेंटीन या जो था ईरान का इलाका रोमन एम्पायर, ये दो सल्तनतें शुमार होती थी। तो वहाँ उसके सिपहसालार से रुस्तम से मिले जाके, बादशाह से भी मिले, तो उन्होंने पूछा कि तुम हमारे पास क्यों आए हो, तो इनकी तलवार की क्रोमी लिपटी हुई थी और खच्चर पे सवार होके आए, तो कपड़ों में पेवत लगे हुए थे। मैंने पूछा तुम आए क्यों हमारे पास, मैं तस्वीर संपर्क की तरह सुना था जो हमारा खुलासा है ना वो सुना। उसने कहा कि इन्होंने कहा उसको कि देखो हम आए नहीं, आए नहीं, अल्लाह चाहते नहीं, देखो अल्लाह ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम कौन है, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ने हमें भेजा, हम सारी दुनिया की तरफ अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह जो भेजने वाला हुआ करता है, जिसको भेजा जाता है भेजने वाले की ताकत उसके साथ होती है। एक सिपाही ने आके दरवाजा खटखटाया, या आप यहाँ चौकीदार है, उसने आपके क्लासरूम में आप आके, या आपके वो जो हॉस्टल है हॉस्टल का, उसने दरवाजा खटखटाया, जी क्या है इसको, आराम कर रहा था उसको, प्रिंसिपल साहब ने जरा बुलाया आपको, क्या वजीर साहब घर में बैठे हुए हैं? एक सिपाही ने आके दरवाजा खटखटाया, भाई वो कैसे आए थे? क्यों आए? तो वक्त आने के बाद कि वो सदर साहब ने बुलाया, अब क्या कह रहे हैं? आगे रवैया बदल जाएगा थे कि ये तो सिपाही है आने वाला, लेकिन जिसने भेजा है वो कौन है इसको देखो। तो रबी बिना मेरे से कहा कि देखो मेरे कपड़ों में ना जाना, मेरी तलवार कितनों में किसको ना देखना, देखो मुझे भेजा किसने है, अल्लाह अल्लाह ने भेजा और अल्लाह की सारी तबियत हमारे साथ, और किसने भेजा है तुमसे क्या तुमसे आके तुम्हारे को माल तुमसे ले, तुमसे को डिग्री मांगे, तुमसे यहाँ कोई जॉब की भीख मांगे, इसके लिए नहीं आए हम, इसके लिए नहीं आए। आज मुसलमान जा रहे, देखो जाना उसका नहीं रुका, जाना है जाना है, लेकिन नीयत बदल लो, सारी दुनिया में जाओ नीयत बदल लो, जो जरूरी भी नाम की नीयत वो कर लो। ये उनवान बन जाते हैं, जॉब उनवान बन गया, डिग्री उनवान बन गई, पीएचडी करो जो भी करो नीयत वो कर लो, रबी भी नाम पर नीयत कर लो, सारी दुनिया में जाओ। अब अल्लाह की मदद आपके साथ होते ये उनसे उनसे भीख मांगने की चीज से ना जाओ, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये आपको मिले ये उनवान बना लो इसको, हम पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं ये उनवान बन गया हमारा, हम जो है वहां पर वो जॉब के लिए जा रहे हैं, कि एक उनवान बना दो, लेकिन नियत भी से वो रबी बिन आमिर बनी रखो। वो हम ये क्या कहा कि लुक हम इसलिए आए थे लुक रिबाद निवाद रिबाद खिलाए बाद रिबाद, कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर बंदों के रब की बंदगी देना है, एक दूसरा हमको दुनिया की तंगियों से निकालकर इसकी आसानियों में लेके आए, और बातिल अज्ञान के जुल्म से निकालकर इस्लाम के अदल में लेके आए, हम इसलिए आए। बस ये नियत कर लो जहां भी जाओ, क्या करें ये तो करोगे ना
इंशाल्लाह।
आज से हम पूरी दुनिया के जिम्मेदार हैं, पूरे आलम की तरफ अल्लाह के नुमाइंदे, अल्लाह की मदद हमारे साथ हो। और रमजान जो ईरान के बादशाह का बेटा था, गिरफ्तार होकर तुमर के सामने लाया गया, उसे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, कैसा रहा, और तुम शकित खा गए इतनी बड़ी शक्ल के मालिक हो गए। उसने कहा कि उमर बात यह है कि अब तक पहले जब लड़ाई हमारी तुम्हारी होती थी अरबों की, हमारे तुम कभी नहीं जीत सके, इस तब हमें धोखा लग गया, हमने ये समझा कि लड़ाई हमारी तुम्हारे साथ है, झगड़ा हमारा तुम्हारे साथ है, हकीकत में तुम अल्लाह के नुमाइंदे थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें एक काम दिया, तुम अल्लाह के उस काम को लेके हमारे पास आए, हमें ये गलती लगी कि आज भी तुम वही अरब हो, लेकिन हकीकत ये थी कि तुम अल्लाह के नुमाइंदे थे, जाहिर में हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ हो रही थी, झगड़ा हमारा तुम्हारे साथ था, हकीकत में हमारी लड़ाई अल्लाह के साथ थी, क्योंकि तुम अल्लाह की दी हुई जिंदगी को हमारे अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा झगड़ा अल्लाह के साथ था। अब तुम ही बताओ उमर कि अल्लाह के साथ लड़के कौन जीत सकता है? ये उस गैर मुस्लिम बादशाह कोई बेटे की समझ में आ गई जो आज अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए, तो हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, तो ये तय कर लो कि पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। तैयार है
ना,
इस काम को अपना मकसद बनाना, इसको अपनी जिम्मेदारी बनाना है, सारी दुनिया में जाने के लिए बताओ कौन कौन तैयार है? सब तैयार है ना जी, दुनिया लेने के लिए नहीं जाना, दुनिया को बदलने के लिए जाना है, और लेना कुछ नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना, मखलूक देगी बहुत थोड़ा देगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अल्लाह देंगे बहुत बड़े पैमाने पे देंगे और हमेशा पास रहेगा, अल्लाह से लेना, मखलूक से कुछ नहीं लेना। और दूसरी गुजारिश ये है, अगली दरखास्त है इसके साथ साथ, कि हम छुट्टियों में जब छुट्टियां हो आप पढ़ाई से जब फारिग हो जाए तो 4 महीने लगा लें, पढ़ाई के बाद जो ही पढ़ाई से फारिग हो जाए तो 4 महीने के लिए जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आप में से तालीम से फारिग होते ही 4 महीने लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? ये इंशाल्लाह आपके नजर में शुमार होगा। अच्छा ये तो हाथ में चीज कर लो। अच्छा ऐसे साथी जो पढ़ाई से फारिग हो गए हैं और आज से इंशाल्लाह 4 महीने के लिए तैयार हैं, ऐसे कौन कौन है वो जरा इजहार कर दो खड़ा, जो पढ़ाई से फारिग हो चुके हैं। ठीक है आजकल आपकी छुट्टियां नहीं है, ये माशाल्लाह ये तैयार, और कौन है जी माशाल्लाह जो नकद तैयार है? खड़े होके बता दो, खड़े होके ऐसे सभी जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, अपनी जगह खड़े हो जाए, जो पढ़ाई से फारिग हो गए, जो पढ़ाई से फारिग हो गए वो जरा खड़े हो जाए अपनी जगह, माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी और भी। हाँ हर एक को पता है कि मैं पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ या नहीं फारिग हुआ, पर्दा तो पर्दा रखना भी जरूरी है ना जी। हमारे एक बयान हुआ तो मेरे जब नवाज साहब ने मुतालबा किया था, मैंने बेचक कौन तैयार है इम्तहान के बाद, तो एक अफसर पीछे से खड़े हो गए फाइनल ईयर में से, कहने लगे कि चिल्ला जो है फाइनल के बाद और 4 महीने सप्लीमेंट्री के बाद, यानी पहले नियत कर रखी है फिर होने। तो हम उसका फोन का पता रखते हैं, पर ये बता दो कि जो पढ़ाई से फारिग हो गए हैं वो जरा खड़े होकर बताओ, और कौन कौन तैयार है? 4 महीने तक, 4 महीने तक, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बताओ भी, और बताओ, बड़े कीमती हैं ये, बड़े, खड़े रहो, खड़े रहो, जरा अपनी जगह पे खड़े रहो, दूसरों को भी हौसला होगा, और बताओ भी, और बताओ भी, ये फरिश्ते दिख रहे हैं, इसको फरिश्ते देख रहे हैं, और भी और भी और भाई माशाल्लाह, ये 4 महीने के लिए तैयार है माशाल्लाह, नकद तैयार है, ये नकद तैयार है माशाल्लाह, और भी, और भाई और भाई, जो पढ़ाई से फारिग हो गए, और भाई और भाई, और जी और जी माशाल्लाह, फरमाइए, बड़े मुबारक है आप हजरात, बहुत मुबारक है आपकी नीयत, आपके जज्बे इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पलटने का जरिया बनेंगे। हमारे के दुआ के बाद आप हजार अपने अपने हल्कों में तशरीफ ले जाके वहां अपनी तशरीफ करवा दें, ठीक है, जो तशरीफ रख दीजिए। अगली दरखास्त दे, अगली गुजारिश दे है कि हर महीने हम 3 दिन लगाया करें, उसकी तरतीब आप दर्ज कर दें, और जब छुट्टियां हों, जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होती, तो हर साल छुट्टियों में चिल्ला लगाना है। तो ऐसे कौन कौन से साथी हैं? छुट्टियां कब होंगी आपको? जून में छुट्टियां होंगी, तो जून आएगा ना इस दफा, और याद भी रहेगा आपको
इंशाल्लाह।
ये बताओ कि जून से चिल्ले के लिए कौन कौन से जा रहे हैं जिनकी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई? जी जी, इनका क्या करना है? हमारे के अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी बस्ती में, जहाँ हम रहते हैं उस मस्जिद के साथ आप जुड़ के उनको बता दे जाते हैं कि भाई देखो, जून से मैंने चिल्ले का इरादा किया है और मेरे साथ और जमात तैयार करो, मिलजुल के जमात तैयार करें, ठीक है जी। और जहाँ पढ़ते हैं, अब इसमें 2-3 काम हमें करने हैं इसके साथ, ये तो आपका अल्लाह कबूल फरमाए, सारी दुनिया में जाना है 7 महीने, साल के लिए मुल्कों में जाना है, छुट्टियों पढ़ाई से फारिग होकर 4 महीने, और छुट्टियों में चिल्ला लगाना है, और हर महीने 3 दिन लगाने, उसकी तरतीब आप दे, और रोजाना घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी इसके लिए थे। और इसके साथ दोनों गश्त, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, बैरूनी गश्त भी और मुकामी गश्त भी, कभी अपने मोहल्ले की जमात या अपने नौजवानों को आमतौर पर गुरबा के मोहल्लों में काम करें, फिर उन्हें की जमातें भी गुरबा के मोहल्लों में ले जाए, उनकी बस्तियों में ले जाए, लेकिन इसके साथ साथ कभी किसी तालीमी इदारे में भी लेंगे, मुनासिबत होती है उसमें जरा काम हो जाता है, तो कभी उसके यहाँ भी लेंगे, कभी गुरबा की बस्तियों में लेंगे, फिर रोजे की जमाते और अपने जरूरी गश्त। इस तरह अपने रोजा हफ्ते में अपना मुकामी गश्त हो, और मस्जिद की तालीम में शिरकत हो, हमारी मस्जिद की तालीम में शिरकत हो, और अगर हम घर में रहते हैं तो रोजाना घर में तालीम का हल काम लगाए, इसका इस्तेमाल हो। और कॉलेज के वक्त में देखो, पढ़ाई का जो वक्त है ना जी, तो पढ़ाई चलो बच्चा अल्लाह के, अल्लाह के रसूल की बात सुनी, पढ़ने का भी कोई दूसरे तरीका ना बता दे, बहुत आसान तरीका है, वो किसी को महसूस भी नहीं होगा, पढ़ाई में नहीं, देखो पढ़ाई इसको
हम,
लेकिन इसके मुतालिक अहकाम को सीखते हुए फिर पढ़ा, वक्त हमें जाया नहीं करना। एक तो जो मजबूर हमें पढ़ना है, अच्छा ये है कि उसको जाने से पहले एक दफा पढ़ लो, और जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो उस्ताद पढ़ाए उसको तवज्जो सुनो, वो वक्त जाया ना किया जाए, और जब वापस आए तो वापस आके उसको अपने जहन से लिखा दें, या एक अगर कोई साथी साथ मिल जाता है, हॉस्टल में है या अपने साथ, तो दोनों बैठ के पहले जुबानी उसको जहन से लिख सामने ला के रखें, भाई आज ये पढ़ा है हमने, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को बताएं, इंशाल्लाह ये 2-3 दफा हो जाएगा, 3-4 दफा ये एक ही दिन में हो जाएगा, और ये ऐसा आजमर होता है, ऐसा याद होता है कि फिर ये भूलता नहीं, आगे हफ्ते 15 दिन के बाद क्लासेस होता है उसमें आदमी पढ़ेगा, फिर जो है वो भी सेंटर पर 3 महीने के इम्तहान चार उसमें आदमी उसी को पढ़ता है वो सब उसको, और आखिर में जब फाइनल इम्तहान में जाता है आदमी, तो सारा उसको अजबर होता है, सिर्फ सफे उल्टाने पड़ते हैं, उसको देखना पड़ता है, बहुत आसान हो जाता है। तो अपना वक्त इस तरह से उसको तकसीम कर दें, और जो पढ़ाई के अलावा का जो वक्त है उसको हम अपना ना समझे, उसको हम दीन कर सकते, तबलीग कर सकते, पढ़ाई के अलावा का वक्त उसको हम, जो आराम का खाने सोने का वक्त है उसको दे, खाने सोने, खाने में कमी नहीं करनी और सोने में भी कमी नहीं करनी, नौजवानों के लिए 6-7 घंटे सोना जरूरी होता है, सोना भी कम नहीं करना, खाना भी कम नहीं करना, खूब खाओ, लेकिन पढ़ाई में उसमें भी हरज ना हो। अच्छा, इसके अलावा का जो वक्त है उसको हम अल्लाह की अमानत, अल्लाह के दीन की अमानत, थोड़ा सा एक आध घंटा अपनी वो वर्जिश में उसमें भी लगाना चाहिए, आधा घंटा जो है रोज, इसलिए कि अल्लाह के नजदीक कभी मोमिन दरीक मोमिन से ज्यादा अच्छा है, और दोनों के लिए हजर दोनों के लिए। ये जो है ना कैसे रखते जैसे कह रहे थे इलाके से पहले कराची वाले आए, किसने पूछा हमारे पंजाब में तो दूध दही का, अब तो वहां भी फर्क पड़ गया। तो एक वो पूछा किसी ने कराची के किसी दोस्त से कि यार तुम इतने पतले दुबले क्यों, क्या बात है? तो उसने क्या कहा कि वो इतने जो है वो मैं पान खाता हूँ, इतने जो है वो क्या वो
नकद वाले हैं ना जी, जिन्होंने नकद जो पढ़ाई से फारिग हो गए हैं 4 महीने के लिए,
जिन्होंने लिखवाया, जिले के लिए लिखवाया है, वो यहाँ से फारिग होने के बाद अपने अपने हल्कों में जाके अपनी तशकील की तरतीबों के साथ बना।
नाम सुन लीजिए, अभी हुआ हो इसके बाद जो है कराची यूनिवर्सिटी के तलबा है, पुस्तकों नंबर सामने जो है 14/56, थोड़ी देर के लिए जमा हो जाए, इनको आपस में कुछ मशवरा करना है। कराची यूनिवर्सिटी के जितने तलबा है उन सबसे दरखास्त है कि सामने की तरफ जो है ना 14/56 वो लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल वहाँ स्पीकर भी लगा हुआ है, उसके पास थोड़ी देर के लिए जमा हो जाए, इनको आपस में कुछ मशवरा करना। جانب سے کی جتنی خیریں جتنی بھلائیاں پھر محبوب علیہ السلام نے مانگی وہ ساری ہمارے حاجی قربان صاحب کو مکمل سے بچوں میں تو برکت نصیب ان کا سایہ تھا دیر ہمارے اوپر جتنے ہاتھ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں ان کی جتنی جان سمجھ رہے ہیں اپنے کرم سے پوری فرما فضل سے پوری فرما ہمارے دیش کی بھی حفاظت فرما کی بھی حفاظت فرما تیرا پیغام دے کے ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں فاطر کی سازشوں سے اس کو محفوظ فرما یار ہمیں امن عطا کر دے یار امن بھی تو تیرے خزانوں سے آتا ہے ہمیں آپس میں محبتیں دے دے ہمیں الفتیں دے دے یار ہمیں امن دے دے ہمیں چین دے دے ہماری دنیا بھی بھلی کر دے ہماری آخر بھی بھلی کر دے جتنی خیریں تیرے محبوب رسول نے مانگی جہاں بھی مانگی جتنی مانگی تیرے محبوب سے زیادہ کوئی مانگنے والا نہ تھا آپ نے صفا میں مانگا مروہ میں مانگا مینا کے خیموں میں مانگا مزدفے کی رات کو مانگا الفاظ کی شام کو مانگا چل میرے محبوب نے بدر میں مانگا فوج میں مانگا حنین میں مانگا زمزم پہ مانگا حکیم پہ مانگا مرتزم پہ مانگا میرے محبوب نے شہری میں مانگا افطاری میں مانگا اعتکاف میں مانگا لیلۃ القدر میں مانگا چل میرے محبوب نے اسلام نے تہجد میں مانگا چل میرے محبوب نے معراج پہ تیرے سامنے بیٹھ کے جتنا مانگا جہاں بھی مانگا وہ ہم سب کو نصیب فرما دے ہماری زندگی کو تصدیق کر دے اسلام کے لیے ہمیں قبول کر دے یا اللہ تو ہی قبول کر دے ہمارے اسلام کے لیے ہمیں پسند کر دے یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے یار ان سب کو قبول فرما ان کے خاندانوں کو قبول فرما یار جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کو قبول